तथा हरंती आकर्षित कर रहे हैं। स्मरतः स्मरण करने से चित्तम मन को गोविंद हर्ष के परम पुरुष अभिहितानी के द्वारा कहा गया मैं मुझको अनुवाद। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से पूर्ण रहते हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। लंबा तात्पर्य है तो हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवद्गीता के उपदेश की ओर है जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल पर दिया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवद्गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे अपितु समस्त देशों तथा काल के लिए हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद्गीता समस्त वैदिक वाङ्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है उनके लिए भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत है जिसे कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए था स्त्रियों श्रमिकों तथा उच्च वर्गीय वैश्यों के लिए तैयार किया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में जो समस्या उठी थी वह भगवद्गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहे थे तो उसने पुनः श्रीमद् भगवद्गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों से सांत्वना भगवद्गीता हमें दिला सकती है अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवद्गीता की शरण ली जा सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम उस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं जब अर्जुन शोक से व्याकुल हो उठे हैं। भगवान कृष्ण भौतिक जगत से पुनः भगवत धाम लौट गए हैं और जब अर्जुन लौट के आ रहे थे तो वो शक्तिहीन जैसे हो गए और कुछ ग्वालों के द्वारा वो परास्त हो गए। और जब वो युधिष्ठिर के दरबार में वापस आ गए, युधिष्ठिर ने अलग अलग सवाल पूछे कि क्यों आप इतने मायूस लग रहे हो। पर युधिष्ठिर के हृदय में भी था कि शायद भगवान कृष्ण चले गए हैं भौतिक जगत से। तो अंत में वो भी संभावना बोलते, क्या जो लक्ष्मीपती सब सौभाग्य के स्रोत भगवान हैं, क्या वो हमें छोड़ के चले गए हैं। और फिर अर्जुन जवाब देते समय एक भक्त का हृदय कैसे भगवान के स्मरण से भरा हुआ रहता है वो दिखाता है। और अपने जीवन में अलग अलग जो विपत्तियाँ आई थी और उसमें कैसे भगवान ने उनको मदद की, उसका स्मरण अर्जुन करते हैं। कहते हैं कैसे कुरुक्षेत्र युद्ध जो था वो एक विशाल महासागर के समान था, पर भगवान की कृपा से मैं उस महासागर के पार जा सका। और ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रसंग बताते हैं और भगवान ने जहाँ जहाँ उनको मदद की थी वो सब प्रसंगों का वर्णन अंत करने के बाद यहाँ पे अभी अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मैं भगवान के संदेश का स्मरण कर रहा हूँ। और रुत्ताप उपशमानि च, रुत हृदय का जो ताप होता है, जो दुख होता है, उसको शमन करने की, शांत करने की क्षमता इस भगवद्गीता के संदेश में है। और अर्जुन यहाँ पे कहते हैं देश काल अर्थ युक्तानि, सब जगह पे हम भगवद्गीता संदेश प्राप्त करते हैं तो उससे हमें मन शांति और शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये एक वैदिक ग्रंथों की विशेषता है। कुछ जो लोग संप्रदाय में नहीं हैं पर जो पांडित्य के स्तर पे स्कॉलर्स के रूप में जो भगवद्गीता का अध्ययन करते हैं या वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि अलग अलग वैदिक शास्त्र अलग अलग चीज़ें कहते हैं, पर हियर वी सी अ कोरिलेशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे भागवतम में भगवद्गीता का उल्लेख आता है और भगवद्गीता की महिमा आती है। तो एक सिस्टमैटिक, एक व्यावहारिक रूप से यदि हम देखते हैं तो इसे बताया गया है कि जो भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, ये एक हायरार्की है। भगवद्गीता टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ गॉड, भागवतम टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ गॉड, एंड चैतन्य चरितामृत टेल्स अस अबाउट द मेंटालिटी ऑफ गॉड। भगवद्गीता हमको बताते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की पहचान क्या है। भागवतम बताते हैं ठीक है भगवान क्या करते हैं, और चैतन्य चरितामृत बताते हैं कि भगवान क्या विचार करते हैं, न केवल क्या कार्य करते हैं पर उनके मन में किस प्रकार के विचार होते हैं। स्टीफन हॉकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपनी एक किताब थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके एंड में शब्द एक वाक प्रचार इस्तेमाल किया कि देन वी विल अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड, तभी हम भगवान के मन को समझ पाएंगे। पर अगर भगवान के मन को समझना है तो कोई वैज्ञानिक पद्धति से हम नहीं समझ सकते, हमको एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोग्रेसिवली भागवतम और चैतन्य चरितामृत ये ऊंचे ग्रंथ है। पर अगर एक बार पिछले प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आप अगर एक बेड पे अकेले रह जाएंगे और कोई आपके साथ नहीं है और सिर्फ एक ग्रंथ आपको आपके पास रखने का मौका है तो आप कौन सा ग्रंथ रखोगे, तो भक्तों को लगा था शायद प्रभुपाद बोले कि भागवतम दशम स्कंद रखेंगे, कृष्णा बुक रखेंगे, चैतन्य चरितामृत के अंत लीला या कुछ रखें। तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब भक्तों ने बोला कि हम, प्रभुपाद जी बोले कि मैं भगवद्गीता रखना चाहूँगा। तो बहुत बार हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि भगवद्गीता बहुत तत्वज्ञान है इसमें, और भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि, कृष्णा बुक, इन सब में अच्छी कहानियाँ हैं और कहानियाँ के बीच में तत्वज्ञान आता है तो हम अच्छा लगता है, तो कहानियाँ भी सुनने को मिलती है, और भगवद्गीता बहुत तत्वज्ञान गूड लगता है और हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है। तो बहुत से भक्त भगवद्गीता में ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं, पर वास्तव में उसका नाम ही है भगवद्गीता। जिन भगवान के ओठों ने वेणु की ध्वनि जागृत करके सब गोपियों को आकर्षित किया अपनी ओर, उन्हीं भगवान के ओठों ने यह भगवद्गीता भी बोली है। और जो भगवान की वेणु गीता है, जो उनके वेणु की ध्वनि है जो गोपियों को उनकी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह से उनकी जो भगवद्गीता है ये बद्ध जीवात्माओं को उनकी ओर आकर्षित करती है। तो इसीलिए भगवद्गीता में भी भगवान का प्रेम पूर्ण हृदय है वह हमें देखने को मिलता है। और प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य है गरुड़ प्रभु नाम के, ग्राहम श्वीक, उन्होंने भगवद्गीता के आधार पर, भगवद्गीता में भक्ति का संदेश कैसे प्राधान्य में है यह दिखाने के लिए एक किताब लिखी है, द बिलवर्ड लॉर्ड्स सीक्रेट लव सॉन्ग। ये भगवद्गीता को उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, भगवत को उन्होंने द बिलवर्ड लॉर्ड बोला है और गीता को सीक्रेट लव सॉन्ग। क्यों सीक्रेट लव सॉन्ग? राज विद्या राजगुह्यम। अभी भगवद्गीता लाखों लाखों की करोड़ की मात्रा में, खासकर गीता पर छोटी छोटी गीता बनाते हैं तो विस्तृत होते हैं, पर भगवद्गीता का सार क्या है, भगवद्गीता का हमारे जीवन में क्या अमल करना है यह अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। तो भगवद्गीता जैसे हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जब संवाद चल रहा होता है तो अलग अलग प्रकार के भाव दोनों व्यक्तियों के संवाद में उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए अगर एक कोई माता अपने बेटे से बात कर रही है तो अगर बेटा नटखट कर रहा है तो माता थोड़ी गुस्सा हो जाएगी, बेटा अगर डर गया है तो माता उसको अपना संरक्षण देने के तरह से बात करेगी। तो जो संवाद होता है, संवाद में जो बोल रहा है उस व्यक्ति के अलग अलग प्रकार की भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इट इज सेड द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन गिव अस ग्लिम्सेस इनटू हिज हार्ट। जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके शब्दों से उसके हृदय में क्या है यह हमें पता चलता है। तो यही हम देखते हैं भगवद्गीता में कि एक व्यक्ति भगवान स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और उनका हृदय क्या है यह हम देख सकते हैं भगवद्गीता में। तो भगवान के अनेक भाव है, पर यहाँ पे हम जो गीता के अलग अलग श्लोकों में जो आठ भगवान के अलग अलग भाव है वो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और वो भाव कैसे महाभारत में व्यक्त हुए हैं वह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे बताया था कि द गीता इज लाइक अ कंडेंस महाभारत एंड द महाभारत इज लाइक अ एक्सपैंडेड गीता। गीता जो है वो महाभारत को संक्षिप्त रूप में बताया गया है इस प्रकार से है, और भगवद्गीता का जो संदेश है वो विस्तारित रूप से अगर हमें देखना है तो वो महाभारत में दिया गया है। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 16वें से 33वें अध्याय जो है वो भगवद्गीता है। भीष्म पर्व मतलब जब भीष्म सेनापति थे कौरवों के, तब जो भी घटनाएं हुई वह भीष्म पर्व में आती हैं। तो उसमें ये भीष्म पर्व काफ़ी लंबा है क्योंकि भीष्म 10 दिन तक महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे, और उसके पहले भी जब युद्ध की घोषणा हुई तब जो फिर योजनाएं बना रहे थे वो सब भी इसी में आता है भीष्म पर्व में। तो भगवान का एक प्रधान जो टोन है, प्रधान भाव जो है वह है कि भगवद्गीता शिक्षण दे रहे हैं वो। अभी भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं? आसान सवाल, 18 अध्याय हैं और कितने श्लोक? 700 श्लोक है, करेक्ट। इसमें से हम देखेंगे कि जो अधिकांश श्लोक हैं, 500 से अधिक श्लोक जो है वो एक प्रकार के भाव में आते हैं। क्या है उसको पहले कहते हैं उपदेश, टीचिंग। टीचिंग मतलब ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं जो पहला उपदेश जो भगवान देते हैं 2:13 श्लोक, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, वो सिखा रहे हैं भगवान तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो। या 2:19 श्लोक, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, क्या वासाम सी जीर्णानि यथा विहाय, 23वां श्लोक 2 अध्याय। ये सब जो है ये क्या है, ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। उपदेश मतलब कि भगवान बता रहे हैं, सब भक्तों से निवेदन कि कृपया थोड़ा आगे आ जाए, पीछे भक्तों को जगह कम पड़ रही है। तो भगवान जब गीता का वर्णन करते हैं तो अधिकांश रूप से वो सिखा रहे हैं अर्जुन को। भगवान एक शिक्षक है, अर्जुन एक विद्यार्थी है। तो ये इसी भाव में अधिकांश लोग आते हैं। हाँ, अभी अगर आपको भगवत गीता का जो भी श्लोक है जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप विचार कर सकते हैं कि जो भी श्लोक आपको पता है वो कौन से भाव में आते हैं, और उससे हम जो भगवान का व्यक्तित्व है उसकी और समझ और उसके प्रति हमारी प्रीति जागृत कर सकते हैं। तो आदेश के अलावा एक और चीज़ होती है और डायरेक्ट, उसे कहते हैं उपदेश। जैसे इंग्लिश में टीचिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। तो उपदेश मतलब ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा है, पर आदेश मतलब तुम ऐसे करो, वो मत करो, ऐसे करो। तो ये जो उपदेश है यह कई जगह भगवान की देते हैं भगवत गीता में। ऐसे कि अगर हम देखते हैं तीसरा अध्याय का तीसवां श्लोक, भगवान कहते हैं मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। वाला चीज बताते भगवान कि तुम युद्ध करो, और कैसे युद्ध करो, विगत ज्वरा, आलस छोड़कर मुझे अपने कर्मों का फल अर्पण करके और द्वंद्व से परे परे होकर युद्ध करो। तो ये क्या है, ये सिर्फ उपदेश नहीं है, आदेश है। ऐसे अगर हम हमारे काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलर एक अपने क्लास में जनरल बताते हैं कुछ कि ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, पर अगर हम व्यक्तिगत मिलते हैं उनसे तो बोलते ये समस्या है मेरे जीवन में क्या करूं, तो बोलते ये ऐसे करो आप, तो वो क्या हो गया, उपदेश हो गया। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि द वैदिक इन वैदिक स्टेटमेंट्स इन द इंपेरेटिव आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इंपेरेटिव यानी आप ऐसे करो, तो अगर इंपेरेटिव उस भाव में आ गए तो उसको उपदेश कहते हैं। तो सब भगवान के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो उपदेश है वो जो भगवान से भक्ति करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह है उपदेश। तो और कोई उदाहरण दे सकते हैं भगवत गीता में कहाँ उपदेश देते हैं भगवान, कोई श्लोक? हाँ, मन मना भव मद भक्तो। यस, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। वास्तव में जो उपदेश है ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। जो आप बता रहे हैं ये आखिर आगे कट में वादा में आता है, क्योंकि उसमें भगवान बता रहे हैं कि आप ऐसे करो और इससे आपको ये फल मिलेगा, आप ये करो फिर इससे आपको ये फल मिलेगा। तो वो भी उपदेश है, बट इट इज मोर देन इंस्ट्रक्शन, इट इज अ इंस्ट्रक्शन विद अ प्रॉमिस कि आप ऐसे करो तो मैं, तो फिर क्या होगा, आप जरूर मेरे पास लौट कर आओगे। पर वो भी उपदेश है, करेक्ट। उस श्लोक के और हम वापस एक और बार आएंगे बाद में। पर और कोई श्लोक जो भगवत गीता में उपदेश के रूप में? यस प्रभु जी, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रया। ओके, करेक्ट। सर्वधर्मान परित्यज्य, यस, वेरी गुड। और कोई? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च, यस, वेरी गुड। ये अच्छा उदाहरण है। बाकी जो श्लोक थे वो हम वापस वादा के उसमें आएंगे, पर ये जो है इसमें भगवान कुछ वादा नहीं कर रहे इस श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च मयि अर्पित मनोबुद्धिर, या इसमें वादा है, माम एवैष्यस्य असंशयः। तो भगवान ऐसे व्यक्ति है कि वो सिर्फ हमें उपदेश नहीं देते हैं। कृष्णा इज नॉट डॉगमैटिक। डॉगमैटिक है तुम ऐसे करो, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं करो। नहीं, भगवान कहते तुम ऐसे करो, इससे क्या फायदा होगा तुमको। स्पष्ट रूप से भगवान उसका उसका हमें परिणाम बताते हैं। इट सेड, अंग्रेजी में कहा होता है, इट इज अ टीचर्स ड्यूटी नॉट ओनली टू टीच द सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट बट ऑल्सो टू टीच थिंकिंग टू द स्टूडेंट। कि जो विद्या शिक्षक होता है उसको क्या करना है, न केवल अपने शिक्षक को ज्ञान देना है पर अपने शिष्य को, पर अपने शिष्य को विचार करना सिखाना है। मतलब ओके, मैं ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह करने से ऐसे होगा। इसलिए अधिकांश रूप से भगवान जो भी उपदेश देते हैं उसके साथ साथ एक वादा प्रदान करते हैं वो। अभी हम देखते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूर मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। यह जो है यह एक उपदेश का उदाहरण है। इसमें इसी श्लोक में डायरेक्टली भगवान कुछ वादा नहीं कर रहे क्या होगा। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान क्या होगा उसे, दूरेण यावर कमण बुद्ध उषरण अन्विच्छा कृपणा फलेतवा। आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं 49वां 50वां श्लोक में कि आप इससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। पर यहाँ पे भगवान बता रहे कि तुम उपदेश इस तरह से पालन करो। तुम अभी ये भारत में बहुत ही प्रचलित श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो शास्त्रों में बताते हैं अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब आप एक व्हाट इज अ हेन, मुर्गी, कोमड़ी एज रिमेम्बर इन मराठी। तो जो मुर्गी होती है, जो मुर्गी का मुर्गी पीछे से हमको अंडा मिलता है, हम लेते नहीं अंडा, जिनको चाहिए उनको तो मुर्गी से पीछे से अंडा मिलता है और आगे से हमको खाना देना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे आगे से क्या है, देने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ पीछे से अंडा लेंगे। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जो भगवान बोलते हैं उसका जो पार्ट उनके लिए कन्वीनियंट है वो लेते हैं, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते। और माँ फलेषु कदाचन है ना, कोई लोग पूछते ही नहीं इसके बारे में। तो ये शास्त्र में बताया अर्ध कुकुट न्याय, कि आधा आधी बात लेना। पर ये जो श्लोक है उसमें अर्ध कुकुट न्याय नहीं है, चतुर कुकुट न्याय है, जो श्लोक का एक चौथा वा हिस्सा लेते। और कई बार आपने देखा हो कई दुकानों में वगैरह गीता सार लिखा है, तो वो कहते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। तो अभी मैंने गीता कई बार पढ़ी है, यहाँ पे हम सब भक्तों ने गीता पढ़ी है, कहीं भी ऐसा श्लोक नहीं है कहीं भी नहीं है ऐसा श्लोक। हाँ ये सही है कि जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा कर, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जो भगवान करने वाले हैं वो अच्छा करने वाले। पर वो बताने के लिए भगवान गीता नहीं बता रहे, हमको भगवान गीता बता रहे कि तुम क्या करो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये भगवान बता रहे गीता में। तो अगर हम जो है भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए उपदेश है गीता में कि आप ऐसा कार्य करो इससे आपका कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि भगवद गीता में आप जो भी करना चाहते हैं वो करो, सब कुछ चल जाएगा, पर ऐसे नहीं है। वे तो स्पष्ट रूप से उपदेश देते। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी मुझे श्लोक पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि भगवान कहते हैं गीता में कि आप जो भी कर सकते हो, जो भी करते करो, पर उससे आप मेरे पास आ जाओगे। प्रभुपाद जी बोले अगर ऐसा होता तो भगवान को गीता बोलने की जरूरत क्या है, जो भी आप करना है वो करोगे आप, फिर भगवान को गीता करने की जरूरत क्या है। भगवान स्पष्ट रूप से उपदेश देते कि आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो। पर इससे आगे अगर आप जाते हैं तो भगवान न केवल उपदेश देते हैं, न केवल आदेश देते हैं, पर वो जिस विषय के बारे में उपदेश दे रहे हैं वो विषय अंत में कौन है, वे स्वयं ही है, वे स्वयं ही वो विषय है जिसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भगवद गीता है वो भगवान के बारे में है, और इसलिए जो भगवद गीता है वह उसमें एक प्रधान अंश आता है जो तीसरा है स्व महिमा वर्णन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सो इन टीचिंग इंस्ट्रक्टिंग रिवीलिंग वन्स ओन ग्लोरीज। तो भगवान खुद की महिमा को जागृत करते हैं गीता में। तो अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि राम ये हीरो है, राम ये प्रधान नायक है। पर अगर हम महाभारत पढ़ते हैं तो पहली दृष्टि से ऐसे लगता नहीं है कि कृष्ण ये हीरो है। महाभारत में ऐसे लगता है कि अर्जुन या पांडव हीरो है, कुछ लोग कर्ण को हीरो बना देते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों के हीरो बना देते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है कि भगवान हीरो है। पर जो भगवद गीता की जो महाभारत की रचना है वो बड़ी बुद्धिमत्ता से की गई है। अनेक जगह महाभारत में पांडवों की महिमा का वर्णन है, युधिष्ठिर की महिमा का वर्णन है, और खास करके अर्जुन की महिमा का वर्णन है। अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वे स्वर्गलोक में गए, और स्वर्गलोक में इस शरीर में कोई जा नहीं सकता है, पर क्योंकि अर्जुन अपने शौर्य से उन्होंने अपने पिता इंद्र को प्रसन्न किया, तो इंद्र ने खुद अपना रथ भेजा और उनको इसी शरीर में ऊपर ले गए। और वहाँ का इतना ऐश्वर्य था, पर इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी अर्जुन वहाँ पे मोहित नहीं हुए। और वहाँ पे जो उर्वशी थी, जो इंद्र की प्रधान अप्सरा में से एक है, तो अर्जुन देख रहे थे कि अर्जुन के पूर्वज थे पुरुराव, और पुरुराव उर्वशी की ओर आकर्षित हो गए थे। तो फिर अर्जुन देख रहे थे कि कैसे, कौन है वो व्यक्ति जिसकी ओर मेरे पूर्वज आकर्षित हो गए थे। तो एक रात को उर्वशी उनके पास आ गई और मैं भी सुंदरी हूं। बोले नहीं, कि तुम पुरुरव की पत्नी थे, मेरे पूर्वज की पत्नी है, तुम मेरे लिए मां के समान हो। तो उर्वशी बोले नहीं, स्वर्ग में सब नियम नहीं होते, कोई पाप वगैरह नहीं लगता है। बोले नहीं, मैं तुम्हें मां के रूप में देखा है, मैं ये विचारधारा बदल नहीं सकता। तो उर्वशी बड़ी क्रोधित हो गई। उर्वशी बोले कि मैं तुम्हारे पास आई हूं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम नपुंसक जैसे कार्य कर रहे हो, इसे तुम नपुंसक बन जाओ। उसने शाप दे दिया। तो बाद में जब अर्जुन इंद्र के पास गए, उन्होंने सारी घटना बताई, तो इंद्र बोले तुम चिंता मत करो, ये जो शाप है ये है एक विशेष कालावधि के लिए लागू होगा और आपको इसका फायदा होगा। तो वो काल कौन सा था? अज्ञातवास। जब अज्ञातवास थे तो अर्जुन बृहन्नला के रूप में, एक नपुंसक के रूप में, वो उत्तरा जो पुत्री थी, उत्तरा, उत्तरा कुमारी, उनको प्रशिक्षण करते थे नृत्य में। तो अर्जुन का इतना इतना इंद्रिय नियंत्रण था कि जो उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है उनकी ओर भी आकर्ष, उनको भी और वो प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए। तभी इंद्र उनको बोले कि तुम्हारा जो इंद्रियों का नियंत्रण है वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा है, तुम बहुत महान हो। और उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि विराट के युद्ध में अर्जुन ने अकेले सब योद्धाओं को हरा दिया। तभी कर्ण, दुर्योधना, दुशासना, द्रोण, भीष्म, कृपा, अश्वत्थामा सब थे, पर अर्जुन ने सबको हरा दिया। तो ये महाभारत का जो स्टोरी लाइन है, महाभारत की कहानी कैसी है कि अर्जुन का महिमा का वर्णन हो रहा है पूरा, और फिर वो अर्जुन जब मोहित हो जाते हैं तो फिर उनको उपदेश कौन देता है? कृष्ण। तो फिर कृष्ण कितने महान हो गए। अगर जैसे जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे और अमेरिका से और यूरोप में जब प्रचार कर रहे थे, तो जो जॉर्ज हैरिसन उस समय बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, गीतकार, संगीतकार थे, तो जब वो प्रभुपाद जी के और आने लग गए, उनसे उनके प्रवचन सुनने लग गए और उनके शिक्षाओं के अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लग गए, तो उससे क्या हुआ? तो जो भी लोगों को नए मिलते थे भक्त, तो बोलते आप जानते हैं किताब किसने लिखा है? नहीं, किसने? दिस हैज बीन रिटन बाय द गुरु ऑफ जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन के गुरु लिखा, और तुरंत लोग ले लेते थे वो किताब। तो अगर कोई महान व्यक्ति है और कोई अगर उस महान व्यक्ति का गुरु बनता है तो फिर उस व्यक्ति की महिमा और हमें पता चलती है। तो ठीक उसी तरह से अर्जुन की महिमा महाभारत में वर्णन हो रहा है, तो इसे लगता नहीं है कि भगवान कृष्ण महाभारत के हीरो है, पर जब हम समझते हैं कि उस अर्जुन को कौन उपदेश दे रहा है, वो भगवान कृष्ण है, तो वो कितने महान हैं। तो इस तरह से इस स्टोरी लाइन के, इस कहानी के, इस प्रकार के मोड़ से भगवान का महिमा का वर्णन होता है महाभारत में, पर विशेष करके जो भगवद गीता है उसमें भी भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं। तो ये भगवद गीता है, धीरे धीरे से भगवान की महिमा का वर्णन और बढ़ रहा है। शुरुआत में पहले अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बताते, ऐसे उल्लेख आता है कि भगवान के जो शंख था, ततः श्वेत हृदय रुक्ते महती संदने सितौ माधव पांडव शैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतौ, कि जो भगवान का शंख है वो दिव्य है। तो पहले उल्लेख आता है कि ये विशेष है, कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। और दूसरे अध्याय में भी भगवान बता रहे कि आपको इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, आप शरीर नहीं है, आत्मा हो। पर भगवद गीता में ही अब तक ये वर्णन नहीं हुआ है कि जो व्यक्ति अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वह स्वयं भगवान है। ऑफकोर्स व्यासदेव हमको बता देते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच, वो नहीं लिखते श्री कृष्ण उवाच। पर उसमें भी एक श्लोक, दूसरा अध्याय 61वें श्लोक में आता है वर्णन कि तुम्हें इंद्रियों का नियंत्रण करना है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत परहा, तुम्हें अपने इंद्रियों का नियंत्रण करके अपना मन मुझ पे केंद्रित करना है। तो कृष्ण, सो द 2.61 रिवील्स कृष्णा नॉट ओनली एज द इंस्ट्रक्टर ऑफ सेंस कंट्रोल बट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंट्रोल सेंसेस, कि न केवल वो आपको इंद्रिय नियंत्रण का उपदेश दे रहे हैं पर वो ये बता रहे हैं कि अगर आप इंद्रियों का नियंत्रण करके करोगे क्या, उसके बाद में आप इंद्रिया मुझ पे लगाओ। जो मायावादी होते हैं, मायावादी में जो लगते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान की लीला नहीं है, सब माया है, वो कहते हैं, वो लोग अपनी के अपने इंद्रियों को नियंत्रण भी कर लेंगे, उसके बाद में करेंगे क्या, उसके बाद में कुछ करने के लिए है ही नहीं। वो जो लोग होते हैं उनके, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब शब्द शब्द माया है, कुछ करने के लिए नहीं होता, क्योंकि सब कार्य माया है। और फिर आनंद कहाँ से आएगा उनके जीवन में? उनके जीवन में एक ही आनंद होता है, क्या है? उनके नाम में। उन सबका नाम जो होता है आनंद से अंत होता है, और उनके जीवन का आनंद भी वहीं पर अंत होता है। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान की महिमा को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमको भगवान में जाके लीन होना है, शांति 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 प्राप्त करनी है। ठीक है, शांति प्राप्त करनी है, पर आत्मा का स्वभाव सच्चित शांति नहीं है, आत्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है। तो इसीलिए दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में एक वर्णन आता है, एक हिंट ड्रॉप कर रहे हैं भगवान। फिर तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में, जैसे मैं अभी पहले कोट किया था, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य आध्यात्म चित्त, मई सर्वाणी कर्माणी, सब कर्मों को आप मेरे ओर त्याग दो, मेरे लिए अर्पण करो। तो उसमें भगवान उल्लेख करते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान के अर्जुन पूछते हैं कि कैसे काम वासना के कारण व्यक्ति पदभ्रष्ट हो जाए, तो काम वासना को कैसे जीतना है, तो बताते हैं 36वें श्लोक से 43वें श्लोक में। और फिर चौथे अध्याय से भगवान की महिमा का वर्णन शुरू हो जाता है। तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संदेश मैं अभी आपको दे रहा हूं, वो पहले मैंने विवस्वान, जो सूर्यदेव है, उनको दिया था। तो सूर्यदेव सबको रोशनी दे रहे हैं, पर भगवान जो सबको रोशनी देने वाले हैं, भगवान ने उनको रोशनी प्रदान की है, उनको ज्ञान की रोशनी प्रदान की है। इमं विवस्वते योगम, और फिर प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने उनको प्रदान किया, फिर विवस्वान ने मनु को दिया, मनु और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ये रघुवंश में आते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के पूर्वज हैं। और फिर आगे बताने लगे तो अर्जुन बोलते रुको रुको रुको, और चौथे श्लोक में पूछते हैं, चौथे जाके चौथे श्लोक में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। वो कहते हैं अर्जुन, कृष्ण जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है, अर्जुन और कृष्ण एक ही उम्र के लगभग, और सूर्यदेव तो कब से है, तो तुमने सूर्यदेव को कैसे उपदेश दिया, कैसे समझ सकता हूँ मैं ये, कथम ए तद विजानीयाम, मैं कैसे समझ सकता हूँ। सुंदर भाव है, ऐसे नहीं अर्जुन, कभी कभी जब कोई प्रवचन होता है तो कोई व्यक्ति सवाल पूछते हैं, तो सवाल किस भाव में पूछते हैं कि कैसे आप सही है बोलते। एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, स्वामी जी डू यू नो हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द नेक्स्ट रूम, बाजू के कमरे में कितने खिड़कियाँ हैं। तो जैसे आपने सबने देखा होगा प्रभुपाद जी का किताब है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो दूसरे एक प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक कंपाइलेशन बनाया है फूलिश क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, कि मूर्खता से सब मूर्खता से पूर्ण सवाल है और बुद्धिमान जवाब है। तो प्रभुपाद जी जो भी ऐसे कुछ मूर्खता से सवाल पूछते थे, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने उन्होंने पूछा, स्वामी जी ये स्वामी कहते हैं कि आपको किसी के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, तुम उनके आदेश का पालन क्यों कर रहे हो? तो इस बार प्रभुपाद जी ने पूछा कि उस कमरे में कितने खिड़कियां हैं, जाके देख लो। उसके लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है। तो जो सवाल पूछने हैं तो वो भाव क्या होता है, कथम एतत् विजानीयाम, मैं कैसे समझ सकता हूं कि ये सत्य है। नहीं, ऐसे नहीं कह रहे कि ये सत्य नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं, मैं कैसे समझ सकता हूँ कि ये सत्य है। और जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो तुरंत अर्जुन जवाब देते हैं कि भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, और फिर उसमें और स्पष्ट हो जाता है, वो बोलते हैं कि अजोपि सनव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन यदा यदा धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो जो श्रृंखला शुरू होती है 6वां 7वां 8वां 9वां श्लोक चौथे अध्याय का, उसमें स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाता है कि जो कृष्ण है ये केवल अर्जुन के बुद्धिमान मित्र नहीं है, पर वे परम पुरुषोत्तम भगवान है। जो स्वमहिमा वर्णन है ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवद्गीता का। और विशेषकर के प्रभुपाद जी को बहुत दुख और क्रोध होता था यह देखकर, कई बार लोग भगवद्गीता पे तात्पर्य लिखते हैं पर भगवान कृष्ण को बाजू को में रख देते हैं। वो कहते हैं कृष्णा इज जस्ट पोएटिक डिवाइस, कि कृष्णा एक ऐसे काव्यात्मक कल्पना है जिससे कि हमें उपदेश दिया जा रहा है। तो अगर हम भगवद्गीता का उपदेश देखते हैं तो ऐसे नहीं है, हाँ कृष्ण बता रहे हैं पर कृष्ण खुद के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आपको भगवद्गीता पे लिखना है तो भगवद्गीता क्या बोल रही है वो बताओ। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि आपको भगवान जो बोल रहे हैं उस पर अगर आपको स्पष्टीकरण करना है तो कीजिए, पर आप भगवान के विरुद्ध जो बोल रहे हैं, मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ कृष्णा इज गीता इज द कृष्णा, भगवान कृष्ण ही गीता के केंद्र है, पर उनको बाजू को रख के लोग क्या करते हैं, अलग अलग विषयों को प्राधान्य देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये गलत है, दिस इज नॉट, ये भगवद्गीता यथारूप नहीं है, दिस इज नॉट भगवद्गीता एज इट इज, दिस इज भगवद्गीता एज यू आर, जैसे आप हो वैसे वो भगवद्गीता बनाई है आपने। तो कई लोग कर्मयोग का निष्कर्ष निकालते हैं, कई लोग अहिंसा का निष्कर्ष निकालते हैं, कई लोग अलग अलग प्रकार का निष्कर्ष निकालते हैं, पर भगवद्गीता जो क्या है वो भगवान के महिमा का वर्णन है। हम देखते हैं स्पष्ट रूप से 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन, 10वां अध्याय विभूति योग, स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। और कुछ कुछ लोग हैं जो भगवद्गीता का अध्ययन करते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण का कितना अहंकार है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। बोले कितना बड़ा अहंकार है ये। ऐसे वो कोई बड़ा बॉक्सिंग स्टार था कैशियस क्ले, तो बोला आई एम द ग्रेटेस्ट। ऐसे आप देखते हैं स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स में वगैरह लोग ऐसे घोषणा करते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। तो क्या भगवान भी उसी भावना में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वर प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आता है और कहीं से कुछ नहीं आता है। तो कितना अहंकार, कुछ मर्यादा होनी चाहिए, कितना अहंकार है ये। तो वास्तव में ऐसे नहीं है ये कि भगवान बड़े नम्र है। अभी मान लीजिए कि अगर मैं आप में से किसी एक भक्त को बुलाता हूँ और मैं अगर मैं आपको बोलता हूँ, हमारे रास विग्रह प्रभु पीछे बैठे, मैं उनको बोलता हूँ प्रभु जी आप यहाँ पे आके आपका परिचय दीजिए, तो वो दो तीन शब्दों में कुछ बोलेंगे कि मैं यहाँ पे डीन एकेडमिक्स हूँ, मैंने PhD किया है, कुछ शब्द बताएंगे। पर हाँ उनके किसी और भक्त को बोलेंगे और बोले आप थोड़ा रास विग्रह प्रभु का परिचय दीजिए, तो क्या होगा, वो विस्तारित रूप से बताएंगे वो इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रचार करते हैं, इतने काउंसलर है, इतना बहुत कुछ बताएंगे वो। तो वैसे ही जब अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं हे कृष्ण आप आपकी महिमा बताओ, तो कृष्ण 700 श्लोक में खत्म कर देते हैं। पर जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोक बताते हैं। तो ऐसे नहीं है कि भगवान का अहंकार बड़ा है, भगवान जो सत्य है वही बता रहे हैं। अरे भगवान भगवान है, अभी क्या वो झूठ बोलेंगे, झूठ क्यों? अगर कोई व्यक्ति PhD है बोलता कि मैं PhD हूं, क्या इतना अहंकार है तुम्हारा, नहीं सत्य है वो। मैं मेरे कोई विद्यार्थी आता है बोलता मैं कॉलेज में फर्स्ट आता हूं, कितना अहंकार है, नहीं फर्स्ट आता है तो है, अगर वो सत्य नहीं है जो बता रहे हैं तो फिर वो अहंकार मान, दंभ माना जाता है। पर अगर सत्य है तो किसी ना किसी को बताना ही है। और भगवान इसलिए खुद की महिमा का वर्णन नहीं करते कि सब मेरा गुणगान करें, नहीं, वो भगवान के वो अपना महिमा का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाए। और त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, जैसे प्रहलाद महाराज 7वें अध्याय में 7वें स्कंद के 19वें अध्याय में अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं भगवान से कि हे प्रभो कि मैं आपके महिमा के गुणगान में मग्न चित्ता, मैं पूरी तरह से मग्न हो गया हूँ और मुझे अभी और किसी भी माया के प्रलोभन के ओर कोई आकर्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया हूँ, आपके महिमा में मैं तल्लीन हो गया हूँ। वैसे तो बताया जाता है कि जब पृथ्वी महाराज की जो महिमा लीला आती है उसमें बताया जाता है कि द सोल इज नरिश्ड बाय ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, कि जो जैसे शरीर को होता है, शरीर का कैसे पोषण होता है, जब हम अन्न खाते हैं उससे पोषण होता है, पर जो आत्मा का पोषण कैसे होता है, दिव्य ध्वनि से पोषण होता है। जो भगवान की महिमा है उसकी ध्वनि से आत्मा का पोषण होता है। तो आत्मा का पोषण करने के लिए भगवान अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और भगवान महिमा को वर्णन इस तरह से करते हैं ताकि जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो समझ ना पाए। इसीलिए भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्षामि अनसूयवे, क्योंकि आप ईर्ष्यालु नहीं हो, इसीलिए मैं आपको मेरी महिमा का वर्णन कर रहा हूं। तो वास्तव में हम खुद की महिमा का वर्णन दो प्रसंग में करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, कोई व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं मैं कितना बड़ा हूं, तो हम बताते कि अरे ऐसे हुआ था मैंने ऐसे किया, और जितना हम उसको महिमा देते उसको उतना और उसकी उतनी ईर्ष्या बढ़ती है। और वो ऐसे 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 परिस्थिति में क्या होता है, लोगों को आनंद आता है दूसरों में ईर्ष्या प्रदान करें मैं कितना बड़ा हूं। जैसे मैं एक हाउसिंग फ्लैट, एक कार का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, तो उसका एडवर्टाइजमेंट क्या था, परचेज दिस कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर कलीग्स आईज, कि ये कार खरीदो और अपना जो बाकी ऑफिस दफ्तर में जो दूसरी नौकरी करने वाले उनके आंखों में जो ईर्ष्या है वो देख के आनंद प्राप्त करो। तो वैसे नहीं है भगवान का भाव, भगवान जो लोग उनके ईर्ष्यालु है उनको वो अपनी महिमा दिखाते ही नहीं है। तो जो ईर्ष्यालु लोग भगवद्गीता पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये सब कर्मयोग ज्ञान योग अहिंसा ये सब गीता का उद्देश्य है, पर जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, जो सही में जानना चाहता है कि हमारे संपूर्ण सृष्टि के कर्ता कौन है, तो उनके बारे में जाना जाता है, तो उनके लिए यह महिमा प्रकट करते हैं भगवान। तो मैं जो बता रहा था कि जो भौतिक भाव क्या है कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनके प्रति मैं मेरी महिमा और दिखाऊंगा, ताकि क्या होगा उनकी ईर्ष्या और बढ़ेगी और फिर मुझे आनंद मिलेगा। जैसे कहते हैं कि लोग आजकल बहुत पैसा प्राप्त करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, क्यों, कि मोस्ट पीपल स्पेंड द मनी दे हैव नॉट अर्न्ड टू परचेज द थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू इम्प्रेस द पीपल दे डोंट लाइक। लोग क्या करते हैं, ऐसा पैसा खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाया नहीं है, मतलब क्या, क्रेडिट कार्ड और लोन लेके, और क्या करते हैं वो पैसे से, ऐसे चीजें खरीदते हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है, और क्यों, ताकि जो लोग मुझे आदर नहीं देते वो मुझे आदर दे, मैं लोन लेके बड़ा घर लूंगा और फिर मेरे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, हाँ फिर वो देखे हाँ इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा घर है उनका। तो मतलब भौतिक चेतना में जब हम दूसरों में अपनी महिमा से ईर्ष्या महिमा का प्रदर्शन करके दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न करा सकते हैं, तो फिर वह भौतिक चेतना के कारण कार्य होता है। पर दूसरे प्रकार का होता है जब दो मित्र बहुत घनिष्ठ हैं, और दो मित्र घनिष्ठ होते हुए अगर वो बताते हैं कि आपको जानते हैं मेरे जीवन में एक बार ऐसे हुआ था और उस समय ऐसे ऐसा कार्य किया मैंने और फिर इसका ऐसा परिणाम हुआ, तो फिर उससे क्या होता है, उससे वो दोनों जानते हैं कि मेरा मित्र ईर्ष्यालु नहीं है, पर उससे जब दोनों एक दूसरे की जो महिमा है वो और समझते हैं तो उनकी मैत्री और बढ़ती है। ऐसे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब राधानाथ महाराज के साथ, या राधानाथ महाराज जब भक्ति तीर्थ महाराज के साथ थे उनके अंतिम दिनों में, तो तभी भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने जीवन के ऐसे अनेक प्रसंग बताए पुगदुसी के समय के जो उन्हें पहले कभी नहीं बताए थे। तो क्यों बताए, क्योंकि वो घनिष्ठ मित्र थे। तो फिर ये क्या होता है, एक प्रकार का हम महिमा का, खुद के महिमा का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि ईर्ष्या बढ़े, पर दूसरे प्रकार के महिमा का जो वर्णन होता है तो उससे प्रेम बढ़ता है, किसी व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूँ और ये व्यक्ति इतना महान है। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, एताम विभूतिम च योगम च, कि जो विभूति और योग जो समझेगा मेरे, वो क्या होगा, याति नास्ति अत्र संशय, वो कहते हैं कि युज्यते अत्र नास्त्र युज्यते नात्र संशय, वो मेरी भक्ति में लग जाएगा। तो इसके लिए भगवान महिमा बता रहे हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर उनकी सेवा में लग जाए। तो ये स्वमहिमा वर्णन है। और फिर इसके आगे अगला क्या है, सॉरी क्रोध। हाँ, तो भगवान एक व्यक्ति है, तो विशेष करके 16वें अध्याय में हम भगवान का क्रोध देखते हैं। 16वें अध्याय का शीर्षक क्या है, किसी को पता है, हाँ दैवीय और आसुरी संपद विभाग। तो इस प्रकार का बुक डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, हमें एक दिखा रहे थे, हमको एक ड्रामा हो रहा था कि कैसे आपको बुक डिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जाता है और वो कहता है कि लो ये क्या, ये भगवद्गीता है। भगवद्गीता किसके बारे में वर्णन करता है, तुम्हारे बारे में। अच्छा कहाँ है, 16वें अध्याय में। पहले 3 श्लोकों में मेरा वर्णन है, बाकी श्लोक में तुम्हारा वर्णन है। पहले 3 श्लोक दैवी संपत्ति के बारे में वर्णन करते हैं, बाकी सब श्लोक जो है असुरी संपत्ति के बारे में। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ये मिथ्याहंकार का भाव गया। पर वास्तव में हम भी असुरी प्रवृत्ति के ही थे एक समय, भगवान की कृपा से हम हमें दैवी गुणों की अभी जागृति हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो भगवान जो दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके गुण का बताते हैं, और फिर विस्तार रूप से चौथे श्लोक से 24वें श्लोक तक असुरी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन करते हैं, और फिर अंत में वो कहते हैं कि इसीलिए तुम शास्त्रों का उल्लंघन मत करो, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जियो, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्या कार्य अवस्थितो। तो उसमें 19वें और 20वें श्लोक में 16वें अध्याय के भगवान बताते हैं कि ये असुरी लोगों की गति क्या होगी। वो कहते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षीपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तो भगवान कहते हैं जो असुरी प्रकार के लोग हैं, तान अहम द्विषतः क्रूरान, जो द्वेष से भरे हुए और जो क्रूर है, संसारेषु नराधमान, जो संसार में जो भी जीव है उनमें से नरा अधम में से है ये। तो क्षीपाम्य, क्षीपाम्य मतलब मैं उनको फेंक दूंगा, कहाँ फेंकूंगा, अजस्रम अशुभाम, अजस्रम है दीर्घ काल के लिए, अशुभान जो अशुभ है, कहाँ क्या अशुभ है, अजस्रम अशुभान, आसुरीष्व एव योनिषु, आसुरी योनि में उनको फेंक दूंगा, मतलब उनका जन्म जो होगा आसुरी योनि होगा। अभी मेरे ईर्ष्या करते हैं वो, तो ठीक है, अगर उनकी ईर्ष्या करने की इच्छा है तो ऐसे शरीर में उनको दे दूंगा मैं जन्म कि वो और ईर्ष्या कर सकते हैं। और फिर अगले श्लोक में और बताते, वो बताते हैं, आप दोहराए मेरे पीछे, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। सो वो कहते हैं आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि के बाद मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म तो क्या होगा उनको, माम अप्राप्यैव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, ततो यान्ते अधमां गतिम, और अधम गति के उछल जाएंगे। तो ये ऐसे लगता है कि भगवान हमेशा के लिए उनको ठुकरा दे रहे हैं। भगवान क्या उनके उद्धार कोई मार्ग है ही नहीं। तो अभी जो पाश्चात्य देश में जो धर्म है, खास करके ख्रिस्त धर्म या इस्लाम या जूही धर्म, ये तीन धर्म है, इन तीनों को सेमेटिक रिलीजन्स कहा जाता है, क्योंकि वे उस मिडिल ईस्ट में जागृत हुए थे, जो उस एरिया का नाम था सेमेटिक पहले। तो फिर इन सब में क्या तत्व है, खास करके क्रिश्चियनिटी में, कि ये एक ही जन्म है आपके पास, और इस जन्म में अगर आप उनके जीसस का आश्रय ग्रहण करेंगे, यू एक्सेप्ट जीसस एज सेवियर, तो फिर आप भगवत धाम चले जाओगे, और नहीं स्वीकार करोगे तो हमेशा के नरक में चले जाओगे। तो ये बड़ा क्रूर लगता है कि एक बार अगर हम भगवान को स्वीकार नहीं करते तो हमेशा के नरक में चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे हयग्रीव प्रभु, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, इज हेल इटर्नल, क्या नरक शाश्वत होता है? प्रभुपाद जी बोले, नथिंग एक्सेप्ट एक्सटैटिक डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इज इटर्नल, कि भगवान की आनंदमय भक्ति के अलावा और कुछ भी शाश्वत नहीं है। कोई नरक में जाता है वो भी कुछ समय के लिए ही है। फिर साधारण पिता भी अपने बच्चों को अनेक बार मौके देता है कि ठीक होने के, सही मार्ग पर आने के, तो वैसे भगवान तो परम पिता है, वो परम करुणामय है। तो इस श्लोक में ऐसे क्यों बता रहे कि वो अधम गति की ओर चले जाएंगे और कभी नहीं आएंगे, ये भगवान कभी मेरी ओर नहीं आएंगे, ये भगवान के हृदय के भाव का प्रकटीकरण है। तो इसीलिए तानहम द्विषतः क्रूरान, तो अभी क्रूरान इस शब्द का अर्थ होता है जो क्रूर है। पर अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी जो भाषांतर करते हैं क्रूरान, उसको वहां पे लिखते हैं मिस्चीवस, मिस्चीवस यानी नटखट। तो अभी कोई संस्कृत पंडित बोले, ये क्रूर नटखट कैसे हो सकता है? पर प्रभुपाद जी जो है वो केवल भाषांतर नहीं कर रहे, वो केवल शब्दानुवाद नहीं कर रहे, वो भावानुवाद कर रहे। ऐसे अगर कोई छोटा बाल, कोई पुत्र है, और पुत्र कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिसे कि पिताजी बहुत नाराज हो गए, पिताजी बोले अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगा, तो ये कहने का भाव क्या है कि नहीं, मैं इसमें जोर ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, कहने का भाव क्या है, तुम ऐसे मत करो। तो वो जो क्रोध है वो प्रेम का ही प्रकटीकरण है। तो वैसे ही जब भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकार के लोग हैं वो आसुरी योनि में चले जाएंगे, तो उसका कहने का भाव क्या, मतलब क्या है कि तुम ऐसा कार्य मत करो, वही भाव है इसका। तो इसलिए ये क्रोध जो है, क्रोध भी भगवान के प्रेम का ही प्रकटीकरण है। तो जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन जो अंतिम युद्ध होने वाला था उसमें एक दूसरे के सामने आ गए थे, और तो अभी एक और कर्ण के जो सारथी थे शाल्य, तो कर्ण ने शाल्य से पूछा कि हे शाल्य, अगर आज के युद्ध में कर्ण मेरा वध करेगा तो तुम क्या करोगे? शाल्य ने कहा, मैं तुरंत मेरे शस्त्र उठा लूंगा और अपने पूरे सामर्थ्य और शक्ति के साथ तुम्हारे हत्यारों पर आक्रमण करूंगा और मैं उनका विध्वंस कर दूंगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करते हुए अपने शरीर को त्याग दूंगा और स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। तो कर्ण बोले, अच्छी बात है। और दूसरी ओर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यदि आज के युद्ध में कर्ण मेरा वध कर देगा तो आप क्या करोगे? तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए, बोले, हे अर्जुन, आसमान में जो तारे हैं वो टूटकर नीचे गिर सकते हैं, जो सागर है वह सूखा हो सकता है, जो वायु है वो बहना रुक सकती है, पर कर्ण तुम्हारा वध नहीं कर सकता है। और अगर किसी तरह से कर्ण ने तुम्हारा वध कर लिया तो मैं मेरा सुदर्शन चक्र उठाकर सब कौरवों का वध कर दूंगा, नहीं मैं मेरा विश्व संहार का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। तो ये जो भगवान का क्रोध है वो क्रोध क्या है? उनके प्रेम का प्रकटीकरण है। जैसे नरसिंह देव है, बड़े क्रोध से भरे हुए लिखते हैं, कहते हैं, तो पहली बार जब जादू रानी माता जी ने अमेरिका में नरसिंह देव का फोटो देखा तो उन्होंने देखा और क्या कर दिया, बोले बहुत भयानक फोटो है, और वो कहीं तो भी रख दिया एक बिस्तर के पीछे। तो प्रभुपाद जी जब क्लीन कर रहे थे, देखा ये फोटो यहाँ पे किसने रखा है? बोला मैंने रखा है प्रभुपाद जी। ये तो भगवान का फोटो है, ये भगवान इतने, आप बोले कृष्ण इतने प्रेम पूर्ण है, और ये क्या भगवान है? बोले नहीं, ये जो भगवान का क्रोध है ये भी उनके प्रेम का रूप है, प्रेम का ही प्रकटीकरण है। तो इसलिए कहते हैं नरसिंह देव क्या है, हाफ मैन हाफ लॉयन फुल गॉड। वो आधे आनव आधे सिंह और पूर्ण भगवान है, और पूर्ण भगवान होने के कारण जो भगवान का प्रेम पूर्ण हृदय है वो भी उनमें है। तो हिरण्यकशिपु वध भी करते हैं, वो भी प्रेम से करते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो नादान बालक के समान है, तो उसकी नादानी बंद करने के लिए वो उस पापी शरीर से उसको मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए भगवान का क्रोध है, उससे भी भक्त क्या होता है, भक्त को लगता है कि भगवान कितने कृपालु है। मान लीजिए अगर कोई रास्ते पे कोई लड़का है, वो अगर सिगरेट फूकने लगता है तो वो सिगरेट फूकेगा तो कोई अगर आप में से कोई उसको डांटेगा भी जाके, पर आप देखें आपका कोई पड़ोसी है या आपका कोई रिश्तेदार में कोई छोटा लड़का है वो सिगरेट फूकने लगा, तो क्या कर रहा है, बकवास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्यों बोल रहे हैं वैसे? क्योंकि आप उसके आपको इस बारे में उसकी चिंता है, आप उसका कल्याण चाहते हैं। तो भगवान जब असुरों को भी निंदा करते हैं यहाँ पे तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। तो ये असुर कौन है? ऐसे नहीं है कि दो सिंह के दांत बाहर आने वाले जो लोग होते हैं वही असुर है। हाँ, वैसे भी प्रकार के असुर होते हैं, पर जयद्रथ महाराज बैक टू गॉड में एक लेख लिखते हैं, कहते हैं हु इज अ डीमन, असुर कौन है? तो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं करता है, जो भी व्यक्ति भगवान के आदेश के खिलाफ कार्य करता है वो असुर है। तो ऐसे हो सकता है कि आपका जो लोकल पोस्टमैन है वो भी असुर हो सकता है, आपका लोकल राजनीति का जो है वो भी असुर हो सकता है, आपका जो किराने वाला है वो भी असुर हो सकता है, आपका पड़ोसी असुर हो सकता है, और फिर बोलते हैं आप भी असुर हो सकते हो। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी दो प्रकार के लोग, जो भक्त नहीं है वो सब असुर है। प्रभुपाद जी बोले, पर वो भक्त बोले कीर्तनानंद महाराज से बोले कि प्रभुपाद अगर हम लोगों को बोले आप असुर हो तो वो गुस्सा हो जाएंगे, बोले कृष्ण बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे। बोले नहीं प्रभुपाद जी, हम कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरे एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या असुर भक्त बन सकते हैं? प्रभुपाद जी स्मित आ गए उनके चेहरे पर, बोले हाँ, कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम भगवान के आदेश का पालन करने लगते हैं, हरिनाम का जप करने लगते हैं, तो असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी दैवी प्रवृत्ति का बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फर्क है क्रिश्चियन धर्म में। उनमें जो डीमन होते हैं दे आर परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंटिटीज, वो हमेशा के लिए असुर है और उनके उद्धार का कोई भाव नहीं, ऐसी उनकी धार्मिक संकल्पना है। पर भगवान का जो करुणा है वह कभी किसी को त्याग नहीं करता है वो। तो इसीलिए जो असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो वो भी भक्त बन सकता है। तो यह भगवान का क्रोध, और फिर उसके बाद में है भगवान का प्रेम। तो ऐसे मैं बताया था द बिलवर्ड लॉर्ड्स सीक्रेट लव सॉन्ग। तो भगवद्गीता क्या है, उसमें अलग अलग चीज़ें बताया, ज्ञान बताया गया, योग बताया गया, पर अंत में वो भगवद्गीता एक प्रेम का संदेश है। भगवान हमें हृदय हमें दृष्टि देते हैं जिससे कि हम वो हमें कितना प्रेम कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में और अंत में वो हमें बोलते हैं कि क्यों आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, बता रहे। तो 12वें अध्याय के 12वें 13वें 14वें 15वें श्लोक में, चार श्लोकों में भगवान बताते हैं कैसे वो सबका पालन कर रहे हैं। बताते हैं कि कैसे हाँ यदादित्य कचम तेजो जगत भासयते अखिलम, कि हम सब सूरज पर रोशनी के लिए निर्भर होते हैं, पर ये सूरज की रोशनी कहाँ से आती है, वो भगवान से आती है, भगवान ही दे रहे हैं। अमेरिका का एक वैज्ञानिक ने संशोधन किया कि अमेरिका का एक प्रांत है ओक्लाहोमा नाम का, तो वो ओक्लाहोमा में जितना सूरज हर रोज आता है तो उतने सूरज का अगर हमको सूरज को बिल देना होगा तो बोले कि अमेरिका के 100 साल का बजट भी कम पड़ेगा एक दिन के सूरज की रोशनी के लिए। तो हम इतना निर्भर है भगवान पर, तो भगवान सूरज की रोशनी दे रहे हैं। और फिर भगवान जो गुरुत्वाकर्षण, लोग वैज्ञानिक कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, पर गुरुत्वाकर्षण बनाया किसने, गामाविश भूतानि धारयामि हम ओजसा, मैं बोलते हैं कि मैं ये ग्रहों को सारे हवा में रख रहा हूँ। और फिर आगे बताते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, कि जो जीवात्मा कहता है कि मैं भगवान का आश्रय लूंगा, मैं भोग करूंगा, पर भोग करने के लिए शरीर चाहिए, तो जो शरीर चाहिए वो शरीर का आश्रय बोलते हैं भगवान मैं ही हूँ। क्योंकि जब हम अन्न खाते हैं जिससे कि हमको शक्ति मिलती है, तो वो अन्न का पचन कौन करते हैं, हम नहीं करते, भगवान ही करते। ये वैज्ञानिक लोग सोच रहे थे कि आजकल लोगों को पचन का बहुत समस्या आती है, क्या कभी भी कुछ भी खाते हैं तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम एक डाइजेस्टिव मशीन डाल देंगे सब पेट में, ऐसे लोगों का हार्ट का हाथ खराब हो तो हाथ डाल देते हैं, हृदय नहीं खराब हो तो हृदय डाल देते हैं, तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वो संशोधन करने लग गए और फिर उनको पता चला कि हमको एक मशीन नहीं, एक चेन ऑफ मशीन्स डालना पड़ेगा, और वो चेन ऑफ मशीन्स कितना लंबा होगा, एटलीस्ट 3 माइल्स, 3 माइल लंबा चेन ऑफ मशीन चाहिए, जितने जैसे कि हम जो अन्न खाते हैं उसको एनर्जी शक्ति में परिवर्तित कर सके। तो फिर उनका निष्कर्ष क्या निकला, अगर आप थोड़ा फिजिक्स जानते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, जितना हम शक्ति से व्यक्ति को किसी चीज़ को दूर ढकेलते हैं उसको काम कहते हैं। तो उनका निष्कर्ष क्या था कि हम जो एक मुट्ठी अन्न खाते हैं वो एक मुट्ठी अन्न खाने के लिए जितना काम होता है हमारे पेट में उतना काम साधारण व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं करता है। मतलब एक मुट्ठी पचाने के लिए इतनी मेहनत लगती है जो हम पूरे जिंदगी में नहीं करते। तो लोग कहते हैं मैं मेहनत नहीं करूँगा तो भगवान खिलाने वाले हैं क्या, तुम मेहनत करो या ना करो भगवान पचा रहे सब कुछ। तो वास्तव में भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, वी गेट एंड फॉरगेट। तो भगवान हमको देते हैं और हमको माफ करते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम स्वीकार करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। पर भगवान कैसे प्रेम कर रहे हैं हमको, वह इस 12वें अध्याय में भगवान दिखाते हैं। और फिर 15वें श्लोक में बताते हैं, इट्स 15 चैप्टर, 15वें अध्याय के 12वें से 15 श्लोक। तो 15.15 में भगवान बताते हैं कि कैसे मैं आप सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदिनेव चाहम, कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, क्यों ज्ञान प्रदान करता हूँ, ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो बड़े बड़े विज्ञान में जो इंस्पिरेशन कहते हैं जिससे कि वो प्रगति करते हैं, वो इंस्पिरेशन भगवान से ही आती है। तो भगवान हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं ताकि हम उनके पास वापस आ सकें। तो इस तरह से भगवान उनका प्रेम हम पर कैसे है वो दिखाते हैं, और विशेष करके 18वें अध्याय में भगवान का प्रेम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे 18वें अध्याय के 58-59 श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन मैं बताया अभी, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करो, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अगर तुम मेरे आदेश का पालन करोगे तो तुम सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। अथ चेत तुम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंश्यसि, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अभी वो बोलते हैं ठीक है, 59वें श्लोक में बोलते हैं विमृश्य दशेषे न यथेच्छसि तथा कुरु, अभी तुम विचार करो तुम्हें क्या करना है और फिर फैसला करो क्या करना है। इस तरह से 59वें श्लोक में नहीं, वो 63वें श्लोक में बताते हैं। तो फिर उसके बाद में अर्जुन विचार करने लगते हैं कि इस अध्याय में ये बताया, उस अध्याय में वो बताया, उस अध्याय में वो बताया। तो फिर भगवान के हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, और प्रेम है पहले से और उमड़ के बाहर आता है। और फिर वो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भूल जाओगे सब कुछ। तो सर्व गुह्यतमं भूया श्रुणुमे परमं वचा इष्टोऽस्मि दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैंने अनेक गुह्य ज्ञान तुमको दिया है, पर सर्व सबसे गुह्य ज्ञान जो है मैं अभी आपको प्रदान करता हूँ। श्रुणुमे परमं वचा, और क्यों बता रहा हूँ मैं, इष्टोऽस्मि दृढमिति। दृढ़ मतलब जैसे हम दृढ़ भक्ति कहते हैं, दृढ़ तो ऐसे बोलते कि कृष्णा इज डिटर्मिंड टू लव अस, वी आर डिटर्मिंड टू फॉरगेट कृष्णा एंड कृष्णा इज डिटर्मिंड टू लव अस। भगवान का दृढ़ संकल्प है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और जीवात्मा कहता है कि मैं आपको भूलना चाहता हूँ। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, गॉड डज नॉट बिलीव इन एथिस्ट्स। साधारणतः लोग कहते हैं एथिस्ट डोंट बिलीव इन गॉड, कि नास्तिक लोग भगवान को नहीं मानते, पर भगवान नास्तिक लोगों को नहीं मानते। मतलब क्या, नास्तिकवाद है उसकी ओर न देख कर भगवान उनके कल्याण के कार्य करते हैं। तो इष्टोऽस्मि दृढमिति, और फिर ओके मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ इसलिए सर सबसे गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर जो गुह्य ज्ञान है वो आपने बताया, मन मना भव सर्वधर्मान परित्यज्य। और उसके बाद में भगवान अपना हृदय बताते हैं, ठीक है ये जो ज्ञान है वो साफ बताने के बाद ज्ञान के महिमा बताते हैं कि जो इसका प्रचार करेगा वो मेरे बहुत प्रिय बन जाएगा। और फिर अंत में कहते हैं भगवान, अच्छा अर्जुन कच्चिद एतत् श्रुतम् पार्थ त्वयि एकाग्रेण चित्तथा कच्चिद् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। क्या तुमने एकाग्रचित से सुना है ये, क्या तुम्हारे साथ सब शंकाएं चली गई है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं तभी कि भगवान के हृदय में इतनी चिंता है कि अर्जुन समझाए कि नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं पूरा संदेश तुम्हें वापस दोहराने के लिए तैयार हूँ अगर तुम समझे नहीं हो। तो आप कल्पना कीजिए, अगर कोई टीचर है, वो टीचर क्लास देते हैं और स्टूडेंट बोलते हैं मुझे समझा नहीं, तो बोले भाड़ में जाओ। नहीं, भाड़ में मैं नहीं जाना है, तो मेरे प्राइवेट ट्यूशन में है और फी दो और फिर समझाऊंगा वापस। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान क्या कह रहे, पूरा वापस बताने को तैयार हूं मैं। तो इष्टोऽस्मि दृढमिति, तो भगवान प्रेम करते। तो जो तो पूरा गीता का उद्देश्य क्या है कि भगवान का हमारे सबके प्रति जो प्रेम है वो हमें दिखाते हैं, और फिर अंत में हमें वो आमंत्रण दे रहे कि आप भी मुझसे प्रेम करो। आई लव यू सो मच, व्हाई डोंट यू लव मी। ये भगवान का गीता का निष्कर्ष है कि अल्टीमेटली जैसे अगर हम आधुनिक भाषा में बोले तो गीता इज कृष्णाज लव लेटर टू ऑल ऑफ अस, कि भगवान का ये प्रेम संदेश हम सब के लिए, और हमें वो आमंत्रण दे रहे कि हम भी उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो ये है भगवान के प्रेम का प्रदर्शन। फिर उसके बाद में है ऐसे अनेक भाव है, तो हम कुछ तुलना तुलना ना तो तुलना जो है कई अजय में पहले बताते सब लोग कहते सब मार्ग एक ही है। तो प्रभुपाद जी सरल उसका पता, ठीक है सब मार्ग एक ही गोल ध्येय पे ले आते हैं, पर वो ध्येय क्या है बताओ आप मुझे। ध्येय क्या है पता नहीं मुझे, तो फिर कैसे आप जाओगे उस ध्येय पे? तो वो ध्येय है भगवान श्री कृष्ण। तो अनेक जगह पे भगवान तुलना करते हैं, 16वें अध्याय में तुलना करते हैं वो दैवी और असुरी। तो उसका निष्कर्ष क्या है कि आप असुरी प्रवृत्ति में जाओ, दैवी प्रवृत्ति में जाओ। फिर 3रे अध्याय की शुरुआत में, 5वें अध्याय की शुरुआत में वे कर्मयोग और ज्ञान योग की तुलना करते हैं। फिर उसी तरह से वे 6ठे अध्याय में ज्ञान योग बताकर ज्ञान योग की तुलना ध्यान योग बताकर ज्ञान योग की तुलना भक्ति योग से करते हैं। ये विस्तारित विषय है तो मैं इसके पूरा नहीं जाऊंगा अभी। संक्षिप्त में भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवद गीता में सब मार्ग बताए हैं तो आपको जो पालन करना है पालन करो। नहीं, ऐसे नहीं है, सब मार्ग बताए हैं, पर सब मार्ग को बताने का उद्देश्य है कि भक्ति कितनी महान है। जैसे अगर कोई अखबार को अपना एडवर्टाइज करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया को एडवाइस करना, टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड एवरीडे, रोज 150 लाख प्रति बेची जाती है, तो अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। पर और जोर से दिखाया तो वो दिखा देखे, इंडियन एक्सप्रेस 1 मिलियन, फिर इकोनॉमिक टाइम्स 1.5, फिर फाइनेंशियल हिंदुस्तान टाइम्स 2.5, और फिर ऐसे अलग अलग पेपर है, DNA 0.5, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया 15 मिलियन। तो क्या होता है उससे, ये तुलनात्मक रूप से जब हम महिमा बताते हैं तो महिमा क्या है वो और स्पष्ट रूप से हो जाती है। तो अभी जो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनकी ये इच्छा नहीं कि आप जाके इंडियन एक्सप्रेस खरीदो। वो इंडियन एक्सप्रेस का सेल क्यों बता रहे हैं, ताकि टाइम्स ऑफ इंडिया का सेल कितना बड़ा है दिखाने के लिए। तो ठीक उसी तरह से भगवान अलग अलग मार्ग बताते हैं भगवद्गीता में, पर उसका उद्देश्य ये नहीं है कि अलग अलग मार्ग हम पालन करें। 11वें अध्याय के 53 और 54 श्लोक में भगवान स्पष्ट बोल देते हैं, नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चैज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान अवसीमम यथा भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतपा। नाहम वेदैर न तपसा न दानेन न चैज्या, कोई भाषांतर की भी जरूरत नहीं यहाँ पे, इतना स्पष्ट है ये। तो तुलना इसलिए करते हैं ताकि भक्ति की महिमा बताए वो। और फिर अंत में है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन द सेकंड लास्ट। सो प्रोत्साहन मतलब से अर्जुन जब 11वें अध्याय में विश्वरूप को देखते हैं तो विश्वरूप का काल रूप खास करके देखते हैं तो क्या होता है, अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। क्षत्रिय कभी भयभीत नहीं होता है, पर ये काल रूप इतना खतरनाक होता है कि अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो रूप का वर्णन करते हैं तो क्या, भीष्म च द्रोणम च जयद्रथम च, सब बड़े बड़े महारथी है वो, दमष्ट्रा करालानि च भयानकानि चूर्णितैर उत्तमांगे से बता रहे कि आपके जो खतरनाक दांत है उसमें वो घुस रहे हैं, और जब घुसे तो क्या हो रहा है, चूर्णितैर टक्कर हो रही है उनके सिर की उत्तमांगई, उनके शरीर के उत्तम भाग से मतलब सिर से, और सिर चूर चूर हो रहा है। और लेलिय से मतलब क्या, विश्व रूप है अपनी जीवा बाहर निकाल के जो खून है वो चख रहा है, तो बहुत भयानक है ये। तो क्यों दिखाते हैं भगवान ऐसे कि जैसे असुरी लोग हैं उनका विनाश अवश्य होने वाला है, यह दिखा रहे हैं भगवान इसमें। और अर्जुन को फिर वो प्रोत्साहन देते हैं कि तुम जरूर युद्ध करो, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम उठो और यश प्राप्त करो, क्यों, क्योंकि मेरी योजना से यह सबका वध हो गया है। अभी भगवान क्रूर नहीं है, जो जीवात्मा भगवान को भूल के भोग करने का प्रयास करता है वह खुद पे क्रूरता लाद रहा है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो शरीर का स्वभाव है कि मृत्यु आने वाली है, तो ये भगवान की क्रूरता नहीं है, हमने शरीर स्वीकार किया है इसीलिए हमने मृत्यु भी स्वीकार की है। अगर हम आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेंगे तो हम भी भगवत धाम लौट जाएंगे। तो भगवान प्रोत्साहन देते हैं कि अर्जुन तुम देखो ये मेरी इच्छा है कि सबका वध होने ही वाला है, तो तुम युद्ध करो और तुम्हारे विजय निश्चित है। और वहीं पर बताते हैं भगवान कि जयद्रथ का भी वध होगा। अभी जयद्रथ देखा जाए तो इतना बड़ा योद्धा नहीं था, पर भगवान बोलते हैं क्योंकि भगवान जानते हैं, त्रिकालज्ञ है, जानते हैं कि भविष्य में जयद्रथ का वध करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो आखिरी जो है भगवान वादा करते हैं, भगवान वादा करते हैं कि तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम सब संकटों से मुक्त होकर मेरे धाम में लौट आओगे। तो जो वादा है ये हमें अच्छे से समझना चाहिए, ऐसे नहीं भगवान वादा कर रहे हैं कि आप मेरी भक्तों को करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में, नहीं, समस्याएं आएगी पर समस्याओं से तुम और भक्ति में प्रगति करोगे, तुम और शक्तिशाली बनोगे। ऐसे हम देखते हैं अर्जुन को भगवद्गीता बताई गई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभिमन्यु का वध हो गया, इरावन का वध हो गया, इरावन अर्जुन के दूसरे पुत्र थे, भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच उनका वध हो गया। तो ऐसे नहीं है कि समस्याएं नहीं आएगी, पर समस्याओं के द्वारा जो भक्त है उसकी और प्रगति होती है, उसकी सेवा और भक्ति बढ़ती है, उसकी चेतना और दिव्य बनती है। तो यह हम महाभारत की कथा से देखे गए। तो जब अभिमन्यु कौरव के चक्रव्यूह के अंदर चले गए और बड़े शक्ति से युद्ध करके अंत में जब अनैतिक रूप से 6 योद्धाओं ने एक समय प्रहार करके उनको वध कर दिया, और जब वध कर दिया तो कौरव में विजय घोष हो गया, और दूर पांडव थे, अर्जुन नहीं थे वहाँ पे, तो पांडव में बड़ा दुख हो गया। और जब अर्जुन वापस आ रहे थे तो अर्जुन को लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बहुत बुरा हो गया उनको लग रहा था, और कोई भी योद्धा उनकी ओर नहीं देख रहे थे, सब उनके आँख चुरा रहे थे। और फिर जैसे वो आगे जा रहे थे, जब वो अपने तंबू में पहुँचे, देखा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आया है, तो उनकी शंका और बढ़ने लगे। और फिर उनको अफवाह सुनी थी कि शायद आज कि द्रोणा ने चक्रव्यूह बनाया था। और जैसे वो अंदर गए तुरंत उनकी आ गई अभिमन्यु के सिंहासन पर, सब योद्धाओं के लिए एक सिंहासन था और वो खाली था, तो अर्जुन का जैसे मानो हृदय चलना बंद हो गया। और फिर युधिष्ठिर को पूछा, हे युधिष्ठिर मेरे प्रिय पुत्र अभिमन्यु कहाँ है, तो युधिष्ठिर के आंखों से आंसू आ रहे थे। युधिष्ठिर ने बताया कि अभिमन्यु इस प्रकार का शौर्य उन्होंने दिखाया जो इतिहास में शायद ही किसी ने दिखाया होगा। हजारों हजारों योद्धाओं का वध करते उन्होंने चक्रव्यूह का विध्वंस कर दिया, पर कौरवों ने अनैतिक रूप से 6 योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण करके वो वध कर दिया। जब अभिमन्यु अर्जुन सुने तो अर्जुन गिर गए जमीन पर और अभिमन्यु अभिमन्यु चिल्लाने रोने लग गए और उनका मन जो था दुख से पूरा भर गया। और जैसे युधिष्ठिर ने बताई पूरी कथा कैसे जयद्रथ ने उनको रोक दिया था इसलिए वो अंदर जा नहीं पाए, तो धीरे धीरे अर्जुन का जो दुख था वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। फिर अर्जुन बोला कि मैं मेरे पुत्र के वध का बदला लूँगा, मैं कल ऐसे शक्ति का प्रदर्शन करूँगा कि यदि कल मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो सारे मेरे जो पुण्य हैं वो मुझसे दूर चले जाए, जो मैंने पाप नहीं किए वो पापों का भी फल मुझे आ जाए। मैं यदि कल अर्जुन का वध नहीं कर सका तो जो दिव्य गति मेरे सारे पूर्वजों को प्राप्त किए वो मुझे प्राप्त न हो पर मैं नरक में चला जाऊँ। और सुनो योद्धाओं, मैं एक और भीषण व्रत लेता हूँ, कल शाम तक यदि मैं अर्जुन का जयद्रथ का वध नहीं करूँगा तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊँगा। तो जब सब अर्जुन ने ऐसा वध लिया तो सब समझ गए कि अभी जयद्रथ का वध होने, सब विजय घोष करने लग गए। और दूसरी ओर कौरव सोच रहे थे कि वाह अभी हमने अभिमन्यु का वध कर दिया, बड़ा योद्धा था वो, कल शायद एक और चक्र भी बनाए गए और एक और योद्धा का वध कर देंगे। जैसे कौरव ऐसे ही मायूस हो, पांडव ऐसे ही मायूस हो गए होंगे। अचानक पांडवों की ओर से विजय घोष की ध्वनि आने लग गई। क्या हो गया, वो सोच रहे थे तभी जयद्रथ वहाँ पे आ गया और जयद्रथ का जो पूरा चेहरा था टेरर भय से भर गया था। ए दुर्योधन, वो पापी इंद्र ने कुंती के द्वारा जो संतान उत्पन्न की है उस निष्ठुर अर्जुन ने व्रत लिया है कि कल सूर्यास्त तक मेरा वध करे, तुम मेरा संरक्षण कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो मैं हिमालय में भाग जाता हूं। तो फिर दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, दुर्योधन को सोचा ये अच्छा मौका है, हम अगर कल अर्जुन को रोक लेंगे तो अर्जुन का भी वध हो जाएगा, अभिमन्यु आ गया कल अर्जुन चला जाएगा, तुम चिंता मत करो, द्रोण यहीं पे है और द्रोण ऐसी सेना की रचना करेंगे कि अर्जुन तुम तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, आपका क्या विचार है द्रोण? तो द्रोणाचार्य बोले कि हे जयद्रथ, पूरी सेना तुम्हारे संरक्षण के लिए नियुक्त होगी कल। और जब द्रोणाचार्य से बोले थे वो जानते थे कि सारे सेना को छेद कर अर्जुन पहुंच जाएंगे और उसका हिंद भी दिया, जयद्रथ अर्जुन तुम तक पहुंच नहीं पाएगा, अर्जुन अकेला तुम तक पहुंच नहीं पाएगा। पर वो मन में बोल रहे थे मैं जानता हूँ अर्जुन अकेला नहीं है, कृष्ण है उनके साथ। तो बोले और वैसे भी अगर अर्जुन पहुंच भी गया, जयद्रथ डर गया और तुम्हारा वध भी कर दिया तो क्षत्रियो के लिए क्या दुख है अगर रणभूमि में युद्ध मत हो गए तो। जयद्रथ डर गया तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। और फिर जब ऐसे व्रत लिया सबको इस वो सब पांडव बहुत खुश हो गए थे, युद्ध की अपेक्षा कर रहे थे अगले दिन। और फिर जब चले गए सब तो कृष्ण अर्जुन के पास गए, कृष्ण बोले अर्जुन को, हे अर्जुन तुमने कैसे व्रत ले लिया, ये तुम जानते नहीं कल द्रोण पूरा शक्ति उसकी सेना की तुम्हें रोकने के लिए लगाएगा। तो अर्जुन बोले हे प्रभु किस बात की चिंता है, तुम्हें मेरी शक्ति पता है और मुझे तुम्हारी शक्ति पता है। क्या चिंता है। तो पूरे रात भर अर्जुन इंतजार कर रहे थे, स्लेप फिटफुली, थोड़ा थोड़ा सोए और इंतजार कर रहे थे कब अगले दिन युद्ध शुरू होगा। और अगले दिन जब वो आए देखा उन्होंने कि जो रणभूमि जो युद्ध जो सेना अरेंज की थी वैसे थी कि वैसे 2 मील लंबी थी और 40 मील डीप थी, उतना दूर उनको जाना था। और फिर अर्जुन ने देखा और कहा कि देखो द्रोण ने कैसे योजना की है मुझे रोकने के लिए, पर वो रोक नहीं पाएगा मुझे। और फिर ऐसे बोल के हाँ अर्जुन तुरंत आक्रमण करने लगे। तो एक दुर्योधन का भाई था दुर्मर्शन, वह पहले आक्रमण करने के लिए बड़े अनेक योद्धाओं के साथ आया पर अर्जुन ने उसको चूर चूर कर दिया। फिर दुशासन सामने आ गया और दुशासन के साथ हजारों हाथी थे और वो सब हजारों हाथियों के साथ आक्रमण कर रहा था, पर अर्जुन ने अपने तीरों से एक तीर से वो अनेक हाथियों को मार रहे थे, एक हाथी के शरीर से जाकर दूसरे हाथी के शरीर को जाके मारकर ऐसे एक तीर से मार रहे थे। और वो दुशासन देख के ही भयभीत हो गया और अर्जुन ने पूरा दुशासन को हरा दिया, पर उनको पता था कि भीम ने व्रत लिया है दुशासन को मारने का, तो इसलिए दुशासन को छोड़ दिया, दुशासन भाग गया। और यह देखकर द्रोण खुद वहाँ पे आ गए और द्रोण अर्जुन में युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रोण के साथ युद्ध है दिन भर चलेगा, तुम्हें जयद्रथ को पहुँचना है, तो तुम द्रोण को बाजू का रखो चले जाओगे। तो अर्जुन बोले ठीक है, और अर्जुन ने कई तीरों से प्रहार किया जिससे कि कुछ समय के लिए हतप्रभ हो गए द्रोण, और तुरंत उनके बाजू से आगे चले गए अर्जुन। और द्रोण बोले अर्जुन तुम डर गए हो, क्यों युद्ध नहीं करते मुझसे, और तीर मारने लग गए अर्जुन की ओर पीछे से। पर कृष्ण ने उनके रथ जो इतना तेजी से लिया कि वो तीर उन तक पहुंच ही नहीं पाए, आगे चले गए वो। और फिर जब अंदर गए वो, तो अनेक अलग अलग योद्धा आने लगे। श्रुतायुष नाम का एक योद्धा था, श्रुतायुष था, उसके पास एक गदा थी, और वो गधा वरुण देव ने उसको दी थी, और ये गधा ऐसी थी अगर किसी पे वो गधा से प्रार करेगा तो उसका विनाश निश्चित था। तो फिर उसने अपनी गधा ली और सीधा वो अर्जुन तीर मार रहे थे और तीर से वो घायल हो रहा था, और पहले कुछ समय के लिए तीर से युद्ध कर रहा था वो, बाद में सोचा ये गधा ही इस्तेमाल करूंगा, वो गधा था, सोच रहा था कि मैं भगवान और अर्जुन को हरा सकता हूँ। तो उसने अपना गधा ली और जोर से आक्रमण करने आ गया, तो अचानक भगवान उठ गए, और क्या हो गया, जो गधा थाड़ करके भगवान के सिर पर लग गई। तो वरुण देव ने उसको वर दिया था, एक वर था कि जिस पे भी तुम इस गधा से प्रहार करोगे उसका वध होगा, पर दूसरा वर, दूसरा उस पर एक कंडीशन थी, एक अट्ठा उस पर क्या था कि अगर किसी निहत्थे व्यक्ति पर आप इस गधा से प्रहार करोगे तो वही गधा उल्टी तुम पर प्रहार करके तुम्हारा विनाश कर देगी। तो जब उसने कृष्ण पे प्रहार किया तो वो गधा उसके हाथ से छूट गया और उसके सिर पे आ गया और कुचल गया उसका सिर, और अर्जुन आगे जाने लग गए। जब अर्जुन आगे जाने लग गए तो अर्जुन के पुराने मित्र थे कृतवर्मन, कृतवर्मन जो एक यदुवंश के थे, तो क्योंकि जब नारायण सेना कौरव की ओर से गए थे तो कृतवर्मन भी उनके ओर से गए थे, तो कृतवर्मन और अर्जुन युद्ध करने लग गए। तो कृतवर्मन बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका जो युद्ध लगभग समान सामर्थ्य के थे, और अर्जुन भी जानते थे कृतवर्मन मेरे पुराने मित्र है, तो इसलिए पूरे भाव से युद्ध नहीं कर रहे थे, पूरे शक्ति से। तो कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, भी समय कमाने के लिए कोई समय नहीं है, तुरंत उसको हरा दो, और बड़े जोर से प्रहार करके कृतवर्मन को हतप्रभ कर दिया उन्होंने अपने तीरों से, और आगे चले गए। से आगे चले गए तो फिर दूसरी ओर एक के बाद ऐसे लग रहा था कि अर्जुन ऐसे सूरज जब रोशनी आती है सूरज की तो अंधकार तुरंत निकल जाता है, तो वैसे सब कौरव सेना और सैनिकों और योद्धाओं का वध हो रहा था। तो दुर्योधन भयभीत हो गया, और दुर्योधन बोला हे द्रोण कुछ करो आप हमें बचाओ इस संकट से। द्रोण बड़ा दुर्योधन बड़ा चिंतित हो गया, हजारों हजारों की सेना में उनके सैनिकों का विनाश हो गया था, कि मैंने आप पे विश्वास रख के आपको मेरा सेनापति बनाया था, और आपने मुझे वादा किया था कि आप युधिष्ठिर का को मुझे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओगे, पर आपने नहीं लाया, और आज मुझे लग रहा है अर्जुन हम सबका विनाश करके ये युद्ध एक ही दिन में खत्म कर देगा, कुछ करके बचाओ आप मुझे। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य बोले कि हे अर्जुन, और फिर दुर्योधन को लगा कि मैंने वो थोड़ा और ज़्यादा बोल दिया, बोले कि बेहतर होता कि मैं अगर कर्ण को नेता पर सेनापति बना था तो फिर वो मेरे युद्ध तो करता था। फिर उनको लगा रहे बाबा द्रोणाचार्य को मैंने ऑफेंड कर दिया, मुझे आप माफ़ करो, मैं बहुत चिंतित हो गया, उसके लिए मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपया क्रोधित मत हो जाओ, पर कुछ कार्य करो आप। तो द्रोणाचार्य ने अपने सिर हिलाया, बोले कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हें उस तरह से प्रेम करता हूँ जैसे मैं मेरे पुत्र अश्वत्थामा से करता हूँ, और इसीलिए पूरे सामर्थ्य से मैं युद्ध कर रहा हूँ, पर मानव के हाथ में तो केवल एंडेवर है, प्रयास है मानव के हाथ में, जो फल है वो तो नियति, वो जो डेस्टिनी किस्मत से फैसला होता है फल का, और जो नियति के स्वामी हैं, किस्मत के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो अर्जुन के रथ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। बोले आप कुछ करो, किसी ना किसी को तो, ये अर्जुन पूरा चले जा रहा है सबका वध करके, तो किसी को तो भी आपको भेजना चाहिए इसको रोकने के लिए। और द्रोण सोचने लगे, बोले कि हे दुर्योधन, पांडवों ने अपनी जो योजना है बड़ी अच्छी तरह से बनाई है, हमारे सारे योद्धा जो है वो अलग अलग जगह पे, ऐसे ये दोनों सेनाएं थे तो अलग अलग जगह पे वे पांडवों के योद्धाओं से युद्ध कर रहे हैं, और कर्ण अश्वत्थामा और मैं खुद जयद्रथ के बाजू में रहने वाले हैं, और अभी अर्जुन बीच में अंदर चला गया है, और अर्जुन के लिए रोकने के लिए अभी कोई भी योद्धा नहीं है एक को छोड़कर, और वो हो तुम। और दुर्योधन पानी पानी हो गया, हे द्रोणाचार्य, मैं शायद इंद्र को रोक सकता हूं पर ये इंद्र के पुत्र को नहीं रोक सकता मैं। वो इतना क्रोधित हो गया है। नहीं, वो द्रोणाचार्य बोले तुम चिंता मत करो, तुम हमारे राजकुमार हो और हम तुमको बलि नहीं चढ़ाएंगे अर्जुन के सामने, पर मेरी एक योजना है, मेरे पास एक ऐसा छिलखत है कि जो कोई उसको भेद नहीं कर सकता है, तो मंत्रों के द्वारा मैं तुम्हें पहना दूंगा और उससे तुम अर्जुन को रोक सकते हो, अर्जुन भी तुम्हारे पार नहीं जा सकता है। हाँ बहुत अच्छा बोले द्रोणाचार्य, बोले दुर्योधन बोले, और फिर उनको पहना दिया। और इधर अर्जुन जा रहे थे तो अभी सूरज ऊपर से नीचे आने लग गया था, और अचानक जैसे जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई किसान होता है जब वो पूरे जब सब घास उग जाती, जब खेती उग जाती है तो काटता है, तो ऐसे सबको काट रहे थे, कोई भी उनके सामने आता। अचानक दो राजकुमार थे, विंद और अनुविंद, वो अर्जुन के सामने आ गए, और जब उनके सामने आ गए तो दोनों ने बड़ी तेज़ी से प्रहार किया, और उनके प्रहार के कारण अर्जुन बेहोश हो गए। तो अर्जुन तुरंत होश में आ गया, फिर उन्होंने देखा, बड़े क्रोध से दो तीर अपने सिर पर एक ही समय अपने बाण पर धनुष पर लगाए और दो तीरों से उन दोनों का वध कर दिया। ऐसे करके बड़े बड़े योद्धा एक के बाद एक आ रहे थे, अर्जुन का वध कर रहे थे। एक सुदक्षिण नाम का एक योद्धा आया और उसने चुनौती दी, और जब अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की तो उसने अपनी भाला निकाल के अर्जुन की ओर फेंका, तो अर्जुन के सीने पे लग गया, और अर्जुन को जैसे चक्कर आने लग गए, पर अर्जुन ने रिकवर होके पुनः प्रस्थापित होके युद्ध किया और उनको भी वध कर दिया। और फिर ये विंद और अनुविंद के पुत्र आए अपने हजारों सैनिकों के साथ, और वो इस तरह से आए जैसे कि कोई कीड़ा होता है वो अग्नि की ओर जा रहा है, सबका वध कर दिया। और अचानक अर्जुन जैसे हजारों सैनिकों के बीच में से जा रहा था, ऐसे अर्जुन कैसे तीर थे कि दो मील दूर जो सैनिक थे, जो योद्धा थे, उनके सर काट रहे थे वो, तो योद्धा उनको अर्जुन नहीं दिख रहा था, पर अर्जुन के तीर आकर उनका वध कर रहे थे दिख रहा था। तो इस प्रकार से अर्जुन युद्ध कर रहे थे उस समय, और ऐसे योद्धाए गिर रहे थे, अचानक अर्जुन ने उनके सामने दुर्योधन को देखा और दुर्योधन हंस रहा था। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों आश्चर्यचकित हो गए, लगता है ये दुर्योधन के मौत का समय आ गया है। तो दुर्योधन बोला, ए अर्जुन, तुम्हें अपने शक्ति का बड़ा गर्व है, तुम्हारी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो, और तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो फिर अर्जुन बड़े क्रोध हो गए और अपने धनुष से उस पर प्रहार करने लगे, और जो भी प्रहार कर रहे थे तो सब जो थे वो चिलखत था, चिलखत के कारण गिर जा रहे थे, और दुर्योधन हंस रहा था, और प्रयास करो। तो कृष्णा अर्जुन के बोले, कृष्णा अर्जुन बोले, अर्जुन तुम्हारा फॉर्म चला गया क्या, आज क्या हो गया, दिस इज नॉट द टाइम टू गेट आउट ऑफ टच। तो फिर अर्जुन सोचने लग गए, अभी द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और द्रोणाचार्य अपना सब ज्ञान उनको दिया था, तो अर्जुन समझ गए क्या हुआ है। तो बोले कि मुझे पता है दुर्योधन ने क्या किया है, और द्रोणाचार्य ने उनका चिलखत उनको पहनाया हुआ है, पर ये दुर्योधन जो है वो निकम्मा है, वो क्षत्रिय है ही नहीं, तो भले ही उसने वो चिलखत पहना है पर वो एक नपुंसक जैसे चिलखत पहन के खड़ा हुआ है, देखो वह चिलखत के बावजूद मैं उसको हरा देता हूँ। फिर क्या किया, वो जो चिलखत था ना वो पूरा शरीर को ढकता था, पर सिर्फ क्योंकि उनको योद्धा को युद्ध करना होता है तो अपनी उंगलियां बेंड करके तीर निकालने होते, सो तो उंगलियों के जो आगे के पार्ट थे वो खाली थे, चिलखत नहीं था। तो बराबर अर्जुन ने निशान लेके 8 तीर उसके 8 उंगलियों में डाल दिए, और दुर्योधन ने अपने धनुष बाण गिरा दिया और चिल्लाने लग गया, छिकने लग गया, और अर्जुन और कृष्ण हंसते हुए आगे चले गए। और फिर ऐसे आगे चले गए तो उधर पीछे पांडव और युधिष्ठिर, खास करके युधिष्ठिर सोचते थे कल अभिमन्यु अंदर चला गया और अभिमन्यु का वध हो गया, आज अर्जुन अंदर चला गया, अभी क्या होगा। तो उन्होंने सोचा क्या करें, सात्यकी जो थे अर्जुन के शिष्य थे उनको बोले कि आप जाओ अर्जुन का वध करने के लिए। तो सात्यकी बोले कि वास्तव में अर्जुन ने बोला था कि आप मुझे आपके बाजू में रहने के लिए, ताकि अगर द्रोण आपका गिरफ्तार करने के आप पे आक्रमण करेगा तो मैं संरक्षण करूंगा। युधिष्ठिर बोले तुम चिंता मत करो, क्योंकि द्रोण तो आज जयद्रथ के संरक्षण के लगे हो गए, तुम चिंता करनी, तुम जाओ, तुम्हारे गुरु जो है अर्जुन के गुरु थे वास्तव सात्यकी के धनुर्विद्या में, तो आज तुम्हें अपने गुरु के प्रति ऋण अदा करने का मौका है। तो चले गए, और सात्यकी भी छोटे थे, 16 साल के थे जैसे कि अर्जुन थे, अभिमन्यु थे। सात्यकी जाने के बाद युधिष्ठिर को चिंता होने लग गई, अगर सात्यकी का वध हो गया तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए भीम को बुलाया। अब भीम बड़े आनंदित हो गए, बोले तुम जाओ, तो भीम उसी का इंतजार कर रहे थे। और ऐसे सात्यकी गए और भीम पीछे गए, तो भीम जब गए तो देखा कि ऐसे जो रास्ता था जिस अर्जुन गए थे वो लाशों के ढेर से भरा हुआ था, सीधा अंदर चले गए, और आधे एक घंटे के अंदर वो पहुंच गए जहाँ पे सात्यकी थे, और सात्यकी भी थोड़ी दूर थे अर्जुन से। तो इस बीच क्या हुआ, जब ये सब चल रहा था तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कृष्ण, अभी तुम्हारे जो घोड़े हैं वो स्वर्गीय है, सेलेस्टियल है, पर ये युद्ध इतना भयानक हो रहा है कि वो भी थक गए हैं, तो उनको कुछ विश्राम चाहिए। रणभूमि के अंदर शत्रुओं के बीच में कहाँ विश्राम होगा? तो कृष्ण बोले, अर्जुन बोले कोई चिंता नहीं है, मैं उतर जाता हूँ और तुम घोड़ों को विश्राम दो। तो अर्जुन उतर गए और जो कौरव योद्धा ने देखा कि अर्जुन उतर गए, अभी कोई रथ पे नहीं है, तो वो आक्रमण करने लगे। पर अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि पूरा गोल गोल घूम घूम के वो तीर छोड़ रहे थे और जो भी उनके पास आ रहा था ऐसे देखिए ब्लॉक्ड बाय अ वॉल ऑफ एरोस, तीरों का दीवार थी, इसे वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। और फिर कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे घोड़ों को भूख और प्यास लगी है। तो अर्जुन बोले, नो प्रॉब्लम। अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र लिया और छोड़ा, तो उसे वो रणभूमि के बीच में ही एक सरोवर प्रकट हो गया और सरोवर के बाजू में घास था और वहाँ पे कुछ हंस थे और सब पक्षी थे और बड़ा सुकून वातावरण था। और कृष्ण बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कृष्ण वो घोड़ों को लेके गए और सब कौरव योद्धा आक्रमण कर रहे थे उस समय अर्जुन की ओर, पर कुछ भी नहीं हो रहा था, अर्जुन सबको रोक रहे थे। और फिर कुछ समय के बाद कृष्ण बोले, अभी तुम्हारे घोड़े ठीक हो गए। तो अर्जुन पूरा अपने रथ पे कूद गए और चलने लगे। तो इस समय 4 घंटे बचे थे, तभी भीम पहुँचे वहाँ पे। जब भीम पहुँचे तो भीम और सात्यकी और अर्जुन तीनों को देखकर कौरव सब कांपने लग गए। और तभी कर्ण वहाँ पे आ गया और कर्ण को देखकर कृष्ण ने इशारा किया कि भीम तुम उनसे चुनौती युद्ध करो। और अर्जुन चले गए आगे। कर्ण अर्जुन से युद्ध करना चाहते थे, पर जब भीम ने उनको चुनौती दी तो भीम उनसे युद्ध करने लगे और भीम और कर्ण का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो अंत में भीम ने अपने भुजाओं की शक्ति से कर्ण के घोड़े को मार डाला, कर्ण के तीर को तोड़ डाला, कर्ण के जो मुकुट था उसको उड़ा दिया। और तभी दुर्योधन का एक भाई था, वो कर्ण को बचाने को आ गया और अपने कर्ण को अपने रथ पे लेने के लिए, और कर्ण के सामने ही एक तीर छोड़ के भीम ने उसका वध कर दिया। और दुर्योधन के अलग अलग भाई आ रहे थे और भीम उसी का इंतजार कर रहे थे और वो सब कर्ण को बचाने आ रहे थे और एक के बाद एक वो मौत के घाट में उतर रहे थे। और फिर दुर्योधन को जब भीम को गुस्सा और आ रहा था तो फिर वो धनुष और बाण सब भूल जाते थे, वो सिर्फ कूद जाते थे और क्या करते थे, अपनी गदा लेके जो उनको तीर मार रहा है उसको अपनी गदा से मार डालते थे सीधा उसके रथ पे जाकर। तो ऐसे जब युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन अपना सिर हाथ में लेके बैठ गया। 1 घंटे में भीम ने उनके 30 भाइयों को मार डाला था। तो दुर्योधन बोला, ये क्या हो गया, लगता है ये कृष्ण भगवान ही है। और भगवान हो गए तो कैसे मैं उनसे युद्ध कर सकता हूँ, कैसे जीत सकता हूँ? तो जो सारी चेतावनियाँ दी थी मैत्रेय ऋषि ने, व्यासदेव ने, वो सब याद आने लगे उनको। पर फिर वो विचार करने लगे, अगर कृष्ण भगवान है तो फिर कैसे अभिमन्यु का वध हुआ? अभिमन्यु उनके प्रिय भक्त का प्रिय पुत्र है, इसीलिए कृष्ण भगवान नहीं है, हम जरूर जीत सकते हैं। देखा सूरज अभी 1 घंटा ही दूर था, तुरंत हमने आक्रमण कर देते, एक आखिरी आक्रमण करेंगे और उनको रोक देंगे। तो फिर कर्ण और अश्वत्थामा आगे से, शाल्य पीछे से, दुर्योधन, दुशासन, द्रोण और दुर्मर्श, ये सब दोनों बाजू से आक्रमण करने लगे अर्जुन की ओर। और अर्जुन पे इतने तीरों का प्रहार हो गया कि ऐसे लग रहा था कि अर्जुन मानो तीरों की बहाड़ में डूब गया हो और अर्जुन कुछ देख भी नहीं पा रहा था। और युद्ध ऐसे चल रहा था, अभी सिर्फ 1/2 घंटा बाकी था। और अर्जुन स्टार्टेड डिस्पेयरिंग, अर्जुन हताश होने लग गए क्योंकि वो आगे जाना छोड़ो, वो बिल्कुल देख भी नहीं पा रहे थे, इतने तीरों का ऐसे बाढ़ मानो उनके ऊपर आ रहा था। तो अर्जुन किस तरह से युद्ध कर रहे थे और तभी कृष्ण ने देखा कि मेरे प्रिय मित्र खतरे में है। तुरंत उन्होंने क्या किया, सुदर्शन लाया और सुदर्शन से ऊपर छोड़ा और सुदर्शन जाके सूरज को बंद कर दिया। सूरज को बंद कर दिया तो अंधेरा छा गया अचानक, और अंधेरा छा गया तो सब कौरव जय घोष करने लगे, अभी अर्जुन मिला, अर्जुन मर जाएगा, अर्जुन को अभी अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। और जब ऐसे बोले तो दुर्योधन हंसते लग गए और जयद्रथ भी अपने सारे दांत दिखा के बाहर आने लगे, सब पीछे छुपे हुए थे। जयद्रथ कह रहे थे, तुम्हारे लिए अग्नि बनाओ मैं अर्जुन। तो अर्जुन ने अपना धनुष बाजू में रख दिया। तो कृष्ण ने कहा, अभी भी समय है अर्जुन, तुम अपना धनुष उठाओ और एक ऐसा तीर लगाओ, ब्रह्मास्त्र शक्ति उसमें डालो और सीधा जयद्रथ की ओर मारो। तो अभी अर्जुन ने सवाल नहीं पूछा कि सूर्यास्त हो गया है, अभी भी समय है। तो अर्जुन ने अपना तीर डाला और जैसे ही अपना तीर रखा तो क्या हो गया, भगवान ने अपना सूर्य चक्र निकाल दिया और तुरंत देखा कि ऐसे सूरज जो हॉराइजन होता है क्षितिज के पास ही था, पर आखिरी कुछ किरणें आ रही थी और सबके सामने अर्जुन का ब्रह्मास्त्र छूटा और जाकर जयद्रथ की सिर की ओर चला गया था। जब छोड़ रहे थे तो भगवान ने बताया यहाँ से 5 मील दूर समंत पंचक में इसके पिताजी है वृद्धक्षत्र, वो तपस्या कर रहे हैं, तुम अपना तीर ऐसे छोड़ो कि वो वृद्धक्षत्र की गोदी में जाके गिरे। और सीधा उन्हें छोड़ा और सबके सामने आंखों के सामने वो तीर जाके जयद्रथ के सिर को काट दिया और जयद्रथ का सिर हवा में उड़ते 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 चला गया और जाके वृद्धक्षत्र की गोद में जाके गिर गया। वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा तो वृद्धक्षत्र तपस्या कर रहे थे, जब ध्यान कर रहे थे अचानक आँख खोली, कुछ तो गिरा हुआ देखा, देखा एक सिर एक, तो वो झटका लेके नीचे गिरा दिया, उठ गए वो। और उन्होंने अपने पुत्र के रक्षण के लिए जयद्रथ के लिए वर दिया था कि जो भी तुम्हारा सिर जमीन पर गिराएगा उसका सिर फूट जाएगा। और क्या हुआ, उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को गिरा दिया, सिर को गिरा दिया और उनका सिर फूट गया। और इस तरह से भगवान ने वो पापी पिता और पुत्र दोनों का उद्धार कर दिया। और फिर इस ओर सब कौरव हताश हो गए, सब पांडव जो थे बड़े आनंदित हो गए। और जब अर्जुन और कृष्ण लौट के आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को शाबाश की दी, जो तुमने आज शौर्य दिखाया है वो शायद इंद्र ने भी दिखाया, किसी इतिहास में नहीं दिखाया होगा। तो अर्जुन बोले कि हे ये सब तो भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। और फिर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान आज आपने दिखा दिया है कि जो भी आपका आश्रय ग्रहण करता है वो कभी परास्त नहीं होता है, उसका जय अब आश्वस्त है। और वही देखते हैं हम भाव प्रभुपाद जी के प्रचार में। प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग में जो असुर है वो उसके सिंह बाहर नहीं आते, पर असुर क्या है, असुर अलग अलग प्रकार के गलत तत्व ज्ञान बोल के भगवान को मारने का प्रयास करते, नास्तिकवाद, मायावाद, शून्यवाद, इस प्रकार के गलत वादों से ये भगवान को नाश करने का प्रयास करते, भगवान हमारी जो हृदय में श्रद्धा है भगवान के प्रति उसका नाश करने का प्रयास करते। पर प्रभुपाद जी ठीक अर्जुन के जैसे ही थे, संपूर्ण विश्व में जाकर उन्होंने प्रचार किया और कोई भी प्रभुपाद जी को हरा नहीं सका डिबेट में। बड़े बड़े तत्वज्ञानी थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े पंडित थे, पर कोई प्रभुपाद जी सबको हरा दिया। और जो भगवान कृष्ण की महिमा है पूरी स्पष्ट रूप से सारे विश्व के लिए जागृत कर दी। तो जो वीर रस है वो केवल युद्ध करने में नहीं है, पर जो कलयुग में युद्ध है वो अज्ञान के विरुद्ध युद्ध है, वो अज्ञान के विरुद्ध युद्ध होता है ज्ञान की प्राप्ति करने से, और वही प्रभुपाद जी ने किया। तो कभी कभी हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई ऐसे कोई कार ऐसे जा रही है और वो कहीं बड़ा चट्टान है, चट्टान से नीचे गिरने वाली है और वो जब नीचे गिरने वाली तो उसका विनाश हो जाएगा, तो कोई हीरो आता है बीच में तो कार को रोक देता है, वाह क्या शक्ति है इसकी, क्या शक्ति है। तो वास्तव में हम सब ऐसे ही कलयुग के शरीर में थे जो सीधा नरक की ओर जा रहा है और कहीं नहीं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में आए और न केवल हमारे नरक की ओर जाने वाले कार को रोक दिया, पर उसको उल्टा करके भगवत धाम भेज दिया अभी। तो हम भगवत धाम को जा ले श्री प्रभुपाद की। तो सारांश में हमने चर्चा की आज कि कैसे भगवद्गीता में भगवान के न केवल तत्वज्ञान है, पर जो व्यक्ति तत्वज्ञान दे रहे उनका भाव भी प्रयुक्त होता है, और अलग अलग जो भाव देखे उपदेश, आदेश, स्वमहिमा वर्णन, उसके बाद में क्रोध, प्रेम, प्रोत्साहन और वादा, और इसके सब अलग अलग उदाहरण देखकर हम देखा कि कैसे भगवान एक बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यक्ति है और उनका प्रेम हमें भगवद्गीता में दिखता है और उनका प्रेम महाभारत की लीलाओं से प्रकट होता है। उसी भगवान से जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो वही भगवान को हमारे हृदय में बुला रहे हैं। और वही जो सामर्थ्य अर्जुन ने दिखाया था वही प्रभुपाद जी ने दिखाया भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने के लिए, और उनकी कृपा से हम भी भगवद्गीता का प्रेम का संदेश है उसको हमारे जीवन में उतार कर भगवत प्रेम का अनुभव करके भगवत धाम लौट सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद्गीता की, श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।